डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट ओटी इतिहास साहित्य और धर्मशास्त्र व्याख्यान 10 2020 डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट हैं जो पुराने नियम का इतिहास साहित्य और धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हैं। व्याख्यान 10 जैकब की कहानियों के समापन पर भी उत्पत्ति की पुस्तक को समाप्त करने वाली जोसेफ कथा के परिचय और निष्कर्ष के रूप में प्रश्नोत्तरी और परीक्षा पूर्वावलोकन 00028 क्लास आइए ऑर्डर पर आए। आज हमारे पास कवर करने के लिए बहुत सारी सामग्री है। हम आज किसी न किसी तरह से उत्पत्ति को समाप्त करने जा रहे हैं, इसलिए आज हमारे पास कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग इस सप्ताह लेखों और संख्याओं की पुस्तक में संख्याओं पर काम कर रहे हैं। हम गुरुवार को एक प्रश्नोत्तरी करेंगे। अगले गुरुवार, गुरुवार से एक सप्ताह बाद हमारी पहली बड़ी परीक्षा है। हमने कक्षा में जो कुछ भी कवर किया है, परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। यदि आपकी रुचि है तो ऑनलाइन पुरानी अध्ययन मार्गदर्शिकाएं मौजूद हैं। मैं इस सप्ताह के गुरुवार रात शुक्रवार सुबह तक एक नई अध्ययन मार्गदर्शिका तैयार करूंगा। लेकिन अगर आप पुराने को देखना चाहें तो उनमें बहुत कुछ वैसा ही है। अब काइल ने परीक्षा के लिए समीक्षा सत्रों के बारे में यहां एक घोषणा की है। काइल लिंकन, आइए प्रार्थना के एक शब्द के साथ शुरुआत करें और फिर हम उस पर उतरेंगे जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। आइए शुरू करें। पिता, आपके शब्दों को देखने के इस अवसर के लिए हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। हम आपको महान कुलपतियों के लिए धन्यवाद देते हैं, अब्राहम, इसहाक और जैकब, और कई चीजें हम उनके जीवन से सीख सकते हैं, और यह भी कि हम आपके बारे में यह देखकर सीख सकते हैं कि आपने इन लोगों के साथ किस तरह से बातचीत की, जिनमें से सभी को समस्याएं थीं, लेकिन जिन सभी के साथ आपने व्यवहार किया और जिनकी आपने देखभाल की। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि जब हमें समस्याएं होती हैं तब भी आप हमारी परवाह करते हैं और आप हमसे प्यार करते हैं, जैसा कि आपके बेटे यीशु मसीह के प्यार में दिखाया गया है, और यह उसके नाम पर है कि हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बी जैकब को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। रेड्स 2:59 से 4:27। पिछली बार हम इसहाक के धोखे के बारे में बात कर रहे थे और याकूब और उसकी मां रिबका तंग थे और इसहाक और एसाव तंग थे। इसहाक ने अपने बेटे एसाव से कहा, बाहर जाओ और मुझे कोई खेल लाकर दो जो मुझे पसंद है। इसे वैसे ही बारबेक्यू करें जैसे वे टेनेसी में करते हैं। तभी जैकब की मां यह बात सुन लेती है और वह जैकब को एक तरफ खींच लेती है। वह कहती है, अरे हम अंदर जाएंगे और उसे धोखा देंगे। याकूब इन बकरी के बालों की चीजों से परेशान हो जाता है और वह अंदर जाता है और अपने अंधे पिता को धोखा देता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि यह गलत बेटा है, इसलिए वह याकूब को आशीर्वाद देता है। एसाव अंदर आता है और कहता है, पिताजी आपको केवल एक ही आशीर्वाद मिला है और मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि इसहाक को पता है कि उसने गलत किया है और वह कहता है कि जैकब को आशीर्वाद मिलना चाहिए। इसहाक एसाव से कहता है, आशीर्वाद को याकूब के पास रहना चाहिए, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन तुम अपने भाई की सेवा करने जा रहे हो तो आपके पास इसहाक का धोखा और यह माता पिता का पक्षपात है। पिता एक का पक्ष लेता है और माँ दूसरे का, जिससे भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप जैकब का झूठ उसका धोखा होता है। जैकब का नाम धोखा देने वाला या चंगा करने वाला जैसा लगता है। गर्भ से बाहर निकलने पर एड़ी पकड़ने वाला, लेकिन हिब्रू भी धोखेबाज जैसा लगता है। यह प्रत्यक्ष जड़ से नहीं है, लेकिन यह धोखेबाज जैसा लगता है। इसलिए जैकब ने अपने पिता के शब्दों की शक्ति की तलाश में अपने पिता को धोखा दिया, जो वास्तव में एक बुरी बात है। सी इसहाक के धोखे के परिणाम 4:28 से 10:09। अब मैं जो सुझाव देना चाहता हूँ वह यह है कि जब जैकब अपने पिता से झूठ बोलता है और बच जाता है, तो क्या जैकब के झूठ का कोई परिणाम होता है? इसहाक के लिए इसके परिणाम है, क्योंकि यह लड़का एक अंधा बूढ़ा आदमी है। अब उसे हर किसी पर यह एहसास होने लगा है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए जिस पर वह भरोसा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी। क्या वह अपनी पत्नी पर भरोसा कर सकता है? उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, उसके बेटे ने उसे धोखा दिया है, और इसलिए अब वह एक अंधा बूढ़ा आदमी है, और उसे एहसास हो रहा है कि वह अपने सबसे करीबी लोगों में से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। तो इसहाक ऐसा कहता है, कांप रहा था। वह एक अंधा बूढ़ा आदमी है, और अब उसके पास भरोसा करने वाला कोई नहीं बचा है। एसाव के विरुद्ध झूठ बोलने से क्या होता है? एसाव ने यह कहते हुए साजिश रचनी शुरू कर दी, जब पिताजी मर जाएंगे तो मैं याकूब को मार डालूंगा, पिताजी के मरने तक वह इसे जाने देगा, लेकिन एक बार पिताजी के मरने के बाद मैं उसे मार डालूंगा। वैसे क्या एसाव ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा कुछ करेगा? एसाव एक शिकारी था जो बाहर जाकर जानवरों को मारता था, और एसाव भी ऐसा ही कुछ करता था। इसलिए एसाव ने अपने भाई की मौत की साजिश रचनी शुरू कर दी। अब रिबका भी झूठ में थी। रिबका इसहाक की पत्नी थी, और रिबका के लिए परिणाम या रिबका उसका पसंदीदा बेटा है जो 20 साल के लिए जाने वाला है, और वह किसके साथ रह गई है? उसकी बहू। एसाव ने 2 हित्ती स्त्रियों से विवाह किया था, और रिबका इन स्त्रियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आपने कभी किसी सास को बहुओं के साथ देखा है? क्या ये कोई समस्या है? वहां हर तरह के तनाव हो सकते हैं। पुत्र के प्रति आपकी निष्ठा है। क्या बेटा अपनी माँ के प्रति वफादार होता है, या बेटा अपनी पत्नी के प्रति वफादार होता है? तो आपको बेटे पति में इस प्रकार की परस्पर विरोधी निष्ठाएं मिलती हैं। वैसे मैंने अक्सर कहा है कि जब आप एक अच्छे आदमी की तलाश में होते हैं, तो क्या आपको उन चीजों में से एक पर ध्यान देना चाहिए कि वह आदमी अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है? एक लड़का अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है, यह महत्वपूर्ण है। रिबका एसाव की पत्नियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैकब को 20 साल के लिए छोड़ना होगा। वह उत्तरी मेसोपोटामिया में हारान की ओर भागने वाला है। वह 20 साल तक अपने परिवार से नहीं मिलेंगे, यहां तक कि उनकी इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाएगी। 20 साल तक परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। तो क्या एक पिता को धोखा देने का कोई परिणाम होता है? क्या इसमें शामिल सभी लोगों के लिए इसके परिणाम थे? हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब याकूब भागने वाला है, क्योंकि उसका भाई उसे मार डालने की साजिश रच रहा है। जब वह भागता है तो कहा जाता है, जैसे ही वह जा रहा है, मैं इस कमरे को इज़राइल की भूमि के रूपक के रूप में उपयोग करने जा रहा हूं। तुम लोग भूमध्य सागर हो, और तुम लोग इज़राइल के पर्वत हो। वहां ऊपर गलील का सागर है। इस घाटी में जॉर्डन नदी है, और मैं मृत सागर हूँ। मृत सागर समुद्र तल से लगभग 1,270 फीट नीचे है, जिसका अर्थ है कि सारा पानी इसमें बहता है। पानी कैसे निकलता है? यह बाहर नहीं बहता, इसे वाष्पित होना पड़ता है। क्या होता है जब पानी को वाष्पित होना पड़ता है? समुद्र और अधिक खारा हो जाता है। यहूदी इसे मृत सागर नहीं कहते, वे इसे नमक सागर कहते हैं। इसमें 33% नमक है, क्या यह नमक की उच्च सांद्रता है? महासागर सामान्यतः लगभग 6 या 7% हैं। यह 33% है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप बिना कुछ किए तैरते हैं, इसलिए आप मूल रूप से सीधे खड़े हो सकते हैं। जब मेरी माँ वहां थीं, तो मुझे टेप पर यह कहते हुए बुरा लग रहा था, लेकिन उनके पास इंटरनेट नहीं है, वह इसे कभी नहीं देख पाएंगी। क्या वसा या मांसपेशियां बेहतर ढंग से तैरती हैं? चर्बी तैरती है। मेरी माँ मृत सागर में चली गई और उसके पैर उसके नीचे से बाहर आ गए और वह खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्हें उसे किनारे पर खींचना पड़ा और किसी को उसे खड़ा करना पड़ा क्योंकि वह उसे खड़ा नहीं कर पा रही थी पैर नीचे क्योंकि वह नमक के कारण प्रसन्न थी। वैसे महिलाओं के लिए वे आप पर नमक छिड़कती हैं ताकि आप में से बुरी चीजें चूस सकें। वे इसे मृत सागर की अहावा क्रीम कहते हैं और आप मिट्टी से स्नान करते हैं और इसे अपने ऊपर डालते हैं, यह आपके लिए अच्छा माना जाता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वह नमक सागर है। यह कौन सा देश है? यह जॉर्डन नदी के दूसरी ओर है। ये जॉर्डन देश है। आज राजा हुसैन, उनकी पत्नी वास्तव में अमेरिकी हैं। वह वहां के एक अच्छे राजा हैं। हम एक मिनट में इस पर वापस आएंगे। दी बेथेल में जैकब की सीढ़ी 10:10 से 18:36। जैकब कहां जा रहा है? वह नीचे दक्षिण से है, इसलिए वह उत्तर की ओर बेथेल नामक स्थान पर जाता है। एल का क्या मतलब है? एल का अर्थ है ईश्वर, एल एलोहिम का संक्षिप्त रूप है। बेथ का अर्थ है का घर, तो बेथेल का अर्थ है भगवान का घर। आप बेट को बेथलेहम से जानते हैं, रोटी का घर। तो जैकब वहां ऊपर जाता है और जब वह वहां होता है, यहीं पर जैकब की सीढ़ी लगती है। मुझे बस अध्याय 28 श्लोक 12 और उसके बाद पढ़ने दें। वह वहां जाता है और फिर सो जाता है। वह एसाव से भाग रहा है क्योंकि उसे डर है कि एसाव उसे मार डालेगा। वह लेट जाता है। क्या आपको याद है संडे स्कूल में कहा गया था कि वह तकिए के लिए एक चट्टान पर लेट जाता है और फिर उसे जैकब की सीढ़ी का सपना आता है? उसका एक सपना था जिसमें उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर टिकी हुई है जिसका शीर्ष स्वर्ग तक पहुंच रहा है और भगवान के स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। उसके ऊपर यहोवा खड़ा था और उसने कहा, मैं यहोवा तुम्हारे पिता इब्राहिम का परमेश्वर, तुम्हारे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को वह भूमि दूंगा जिस पर तुम सो रहे हो। जैसे ही वह कहता है मैं तुम्हें जमीन देने जा रहा हूं, यह क्या है? यह वाचा का नवीनीकरण है। जैसा कि मैं इब्राहिम के साथ था और मैंने इब्राहिम को वाचा दी थी कि तुम इस भूमि को पाओगे, कि तुम्हारा वंश आकाश के तारों के समान बढ़ेगा और तुम सभी राष्ट्रों के लिए एक आशीर्वाद बनोगे। मैंने इब्राहिम को वाचा दी, मैंने इसे इसहाक को दोहराया और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ याकूब, और यह कहता है मैं तुम्हें भूमि दूंगा और तुम्हारे वंशज पृथ्वी की धूल के समान होंगे और तुम पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण तक फैल जाओगे। पृथ्वी पर सभी लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। तो वह भूमि बीज और आशीर्वाद है जो संक्रमण के इस समय में याकूब के लिए फिर से दोहराया गया है। तो इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर अब याकूब का परमेश्वर बन गया। भगवान उनसे यही मिलते हैं, लेकिन स्वर्ग की यह सीढ़ी क्या है? बहुत से लोग सुझाव देते हैं और मुझे लगता है कि वे सही हैं कि आपके पास यहां जो है वह जिग्गुराट है। जिग्गुराट क्या है? मेसोपोटामिया में जिग्गुराट एक सीढ़ीदार पिरामिड है जो मिस्र में मौजूद पिरामिड से अलग है। मिस्र में चिकने पिरामिड थे जो आयताकार थे। सीढ़ी नुमा पिरामिड के सामने एक सीढ़ी थी जो ऊपर तक जाती थी और सबसे ऊपर भगवान का घर था। तो कुछ लोगों का मानना है कि जैकब यहाँ जो देख रहा है वह मेसोपोटामिया जिग्गुराट है। जिग्गुराट वास्तव में एक पहाड़ जैसा था। लोगों ने एक पहाड़ बनाया ताकि उनके देवता शीर्ष पर निवास कर सकें। इसलिए परमेश्वर उस कल्पना का उपयोग करता है क्योंकि जैकब उस कल्पना से परिचित है। जैकब की सीढ़ी जिग्गुराट रूप रही होगी। फिर हम उस पर अनुमान लगा रहे हैं, हम निश्चित नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शीर्ष पर भगवान तक जाने वाली सीढ़ी एक जिग्गुराट कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यहीं पर याकूब अपने लिए ईश्वर से मिलता है और इसलिए यह वाचा का नवीनीकरण है जहां अब्राहम का ईश्वर अब उसका ईश्वर बन जाता है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जैकब का अपने परिवार को छोड़कर पहली बार भगवान से मिलना कॉलेज के वर्षों जैसा है। क्या आप में से कुछ लोग ईसाई परिवारों में पले बढ़े हैं जहां आप चर्च जाते हैं और आपके माता पिता धार्मिक हैं, इसलिए आप धार्मिक हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आप वास्तव में धार्मिक हैं? फिर आप अपना परिवार छोड़ देते हैं और कॉलेज पहुंच जाते हैं और कॉलेज में क्या आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं? अब यह वह नहीं है जिस पर आपके माता पिता विश्वास करते थे, यह वह है जिस पर आप विश्वास करते थे। इसलिए कॉलेज में कई मायनों में यह भेदभाव होता है जहां आप अपना खुद का व्यक्ति बन जाते हैं। मैं एक धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालय से गुजरा जहां मैं अपना विश्वास बनाने की कोशिश कर रहा था और वे इसे तोड़ने की कोशिश करते रहे और मुझे निर्णय लेना था, क्या मैं ईश्वर को स्वीकार करना चाहता हूं? क्या मैं उन सिद्धांतों का पालन करता हूं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, या क्या मैं एक नया व्यक्ति बन जाता हूं? इसलिए मुझे उन चीजों पर निर्णय लेना पड़ा। तो कॉलेज में अपने लिए ईश्वर से मिलने के मामले में यह भेदभाव होता है। तो एक तरह से जैकब का बेथेल जाना उनके लिए ईश्वर से मुलाकात है। ईश्वर इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर है, लेकिन क्या ईश्वर जैकब का ईश्वर है? तो जैकब को उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। वह बेथेल में भगवान से मिलता है और वही होता है। अब श्लोक 18 में याकूब ने इस स्मारक पत्थर को स्थापित किया है और आप देखेंगे कि कुलपिता और मूसा और यहोशू जैसे अन्य लोग चीजों को यादगार बनाने के लिए इन स्मारक पत्थरों को स्थापित करने जा रहे हैं। वैसे हम आज भी स्मारक बनाते हैं। यदि आप वाशिंगटन डीसी जाएं तो क्या वहां स्मारक हैं? क्या कोई वाशिंगटन स्मारक तक गया है? असली लंबा, क्या आपने देखा कि उनमें भूकंप आया था? जब कोई व्यक्ति वाशिंगटन स्मारक के शीर्ष पर था तो उसके पास एक वीडियो कैमरा था जिसमें पूरा स्मारक हिलना शुरू कर रहा था। क्या आपको लगता है कि यह मजेदार होगा? उन्होंने इसे फिल्माया और जाहिर तौर पर वे स्मारक में दरारों को लेकर चिंतित हैं। वाशिंगटन स्मारक वाशिंगटन की स्मृति में है। मैं वियतनाम स्मारक पर जाता हूँ, क्या आप वहां गए हैं? यह उन लोगों की याद दिलाता है जो वहां मारे गए थे। मेरे पिता कोरियाई युद्ध स्मारक पर जाते थे जिसे उन्होंने अभी बनाया था। वहां एक नया मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्मारक भी बनाया गया है। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। यह काफी दिलचस्प लग रहा है, इसलिए अगली बार जब हम नीचे जाएंगे तो इसे देखने जाना चाहेंगे। इसलिए हम चीजों को पत्थर में याद करते हैं। वैसे वह 20 साल बाद यहां दोबारा आने वाले हैं। वह जा रहा है और बेथेल वापस आ रहा है, और 20 साल बाद यहां बेथेल में क्या होगा, यह काफी दिलचस्प होने वाला है। अब पद 22 में थोड़ा सा नीचे आकर मुझे यह पढ़ने दीजिए, याकूब ने मन्नत मानी और कहा, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, और यदि वह मुझे भोजन देगा, खाओ और पहनने को वस्त्र दो, जिससे मैं अपने पिता के घर में निडर लौट आऊं, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, क्या याकूब यह शर्त लगा रहा है? वह कह रहा है, भगवान, अगर आप मुझे यहाँ वापस लाएंगे और मुझे भोजन और कपड़े देंगे तो आप मेरे भगवान होंगे। और यह पत्थर जिसे मैंने खंभे के समान खड़ा किया है, वह परमेश्वर का भवन ठहरेगा। क्या आपको यहाँ शब्दों का खेल मिलता है? भगवान का घर, वह क्या है? बेथेल का अर्थ है भगवान का घर। क्या आप देख रहे हैं कि वह पत्थर कैसे खड़ा कर रहा है? उन्होंने कहा कि तब पत्थर भगवान का घर होगा। बेथेल के लिए शब्दों पर यह नाटक है। और जो कुछ तुम मुझे दोगे, मैं उसका दसवां हिस्सा तुम्हें दूंगा। यह दसवां भाग कहां से आता है? मूसा बाद में व्यवस्था देगा, और तुम लोगों ने लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और अन्य बातें पढ़ी हैं, और उसमें दसवां भाग कहा जाएगा। क्या धर्मशास्त्रों में अब तक दसवें दशमांश के बारे में कोई आज्ञा है? नहीं, ऐसा लगता है कि जैकब भगवान को केवल दसवां हिस्सा या दशमांश देना जानता है। वैसे इब्राहिम ने सदोम और अमोरा की लड़ाई के बाद मलिकिसिदक को दसवां हिस्सा भी दिया। इसलिए यह काफी दिलचस्प है कि इब्राहिम और जैकब दोनों को इस दसवें वेतन या दशमांश के बारे में पता है। वह कहता है कि जब तुम मुझे यहाँ वापस लाओगे तो मैं तुम्हें मेरे जाने के बाद जो भी मिलेगा उसका दसवां हिस्सा दूंगा। हारान में इजैकब, राहेल, लिया और लाबान 18:37 से 20:11। खैर, आगे क्या होगा? जैकब बेथेल से उड़ान भरता है और वह वापस दरवाजे से बाहर जा रहा है और वह मेसोपोटामिया में हारान तक जा रहा है। जब वह हारान में होगा तो कौन मिलने वाला है? आप प्राचीन विश्व में महिलाओं से कहाँ मिलते हैं? यदि आप महिलाओं से मिलने जा रहे हैं तो आप कहाँ घूमेंगे? कुएं पर। आप उस महिला से कुएं पर मिलते हैं। अब वैसे क्या इसहाक और रिबका के साथ ऐसा होता है? रिबका वहां कुएं पर है और नौकर उसे खींचता है और कहता है, अगर वह मेरे ऊंटों को पानी पिलाती है तो वह वही है। इसका क्या मतलब है? वह एक अच्छी कार्यकर्ता है। तो तुम्हें हमेशा कुएं पर औरतें ही मिलती हैं। मूसा अपनी पत्नी सिप्पोरा से कहां मिला? कुएं पर। तो जैकब कुएं पर है। इसमें कहा गया है कि लाबान की दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया की आंखें कमजोर थीं। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन रेचेल रूप में सुंदर और सुंदर थी। जैकब राहेल से प्रेम करता था और उसने कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के बदले में 7 वर्ष तक काम करूंगा। कुछ बातें, क्या यह इस लड़की के लिए वस्तु विनिमय है? यह कहते हुए, मैं 7 वर्ष तक तुम्हारे लिए काम करूंगा, तब तुम मुझे अपनी बेटी दे देना। क्या इस लड़की का कटा हुआ लीवर है? क्या उसे इसके लिए सहमत होना पड़ा? उनके पास आमतौर पर इनकार करने का अधिकार होता है। वह इससे सहमत है। जैकब 7 साल तक उसके लिए मेहनत करता रहा। जैकब और राहेल प्रेम वासना की प्रकृति और समय 20:12 से 22:48। जब मैं छोटा था तो मेरे मन में एक सवाल था कि प्यार और वासना के बीच क्या अंतर है। जब मैं चर्च में बड़ा हुआ तो उन्होंने मूल रूप से हमें सिखाया कि तुम्हें अगापे प्रेम है, जो कि क्या है? ईश्वर का प्यार। आपको इरोस लव था, जो यौन आकर्षण प्रेम था। तो यह अगापे प्रेम था और यह वासना, इच्छा, एरोस या कामुक प्रेम था। यह हमेशा इतना स्पष्ट था कि आप जानते हैं कि अगापे प्रेम यहाँ पर था और कामुक प्रेम वहां पर था। फिर दुर्भाग्य से, मेरे लिए सौभाग्य से, मैं अपनी पत्नी से मिला, और जब मैं अपनी पत्नी से अचानक मिला तो ऐसा लगा जैसे ये दो चीजें इस तरह हो गईं, और मेरा खुद से सवाल था, और यह मेरे लिए एक गंभीर सवाल था, क्या मैं कामुक हूँ? मैं इस महिला से प्यार करता हूँ क्योंकि वह सुंदर थी, वह अद्भुत है, वह प्रतिभाशाली है, उसमें वह सब कुछ है जिसका मैंने सपना देखा था, लेकिन क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? मैं उससे वासना करता हूँ, लेकिन क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? आपको फर्क दिखता है? क्या मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं सिर्फ उसकी ओर आकर्षित हूँ? इसलिए मैं इस बात से जूझ रहा था कि क्या यह सच में प्यार था या यह वासना थी। मुझे उस चीज को सुलझाना था और आज शायद कोई भी इससे जूझता नहीं है। यह पुरानी चीज है। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि मैं वास्तव में इससे जूझ रहा था क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करना चाहता था। अब याकूब राहेल को देखता है। वह उसके लिए 7 साल तक काम करता है। 7 साल के अंत में राहेल इस आदमी को देखती है। क्या वह उससे प्यार करता है या नहीं? आप में से कितने लोग एक लड़की के लिए 7 साल तक काम करेंगे? 7 साल, क्या यह बहुत लंबा समय है? क्या समय प्यार और वासना के बीच अंतर करता है? क्या वासना अब एक प्रकार की उपभोग्य वस्तु है? और मुझे सच में मूर्ख बनने दो, क्या प्यार इंतजार कर सकता है? क्या प्यार में समय लग सकता है? तो मैं 7 साल बाद कह रहा हूं कि क्या रेचेल को पूरा यकीन है कि यह लड़का उससे प्यार करता है? इस आदमी ने उसके लिए 7 साल तक काम किया है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह सुंदर है। यह पाठ सुंदर है, यह थोड़ा अटपटा है, लेकिन मुझे इसे पढ़ने दीजिए क्योंकि यह बहुत सुंदर है। लेकिन हम अक्सर सुंदरता का काम नहीं करते। हम अपनी संस्कृति में सुंदरता की तुलना में व्यंग्य से बेहतर काम करते हैं। जैकब रेचेल से प्यार करता था। उसने कहा, मैं छोटी बेटी के बदले में 7 साल काम करूंगा। अत याकूब ने राहेल को पाने के लिए 7 वर्ष की सेवा की, परंतु उसके प्रति उसके प्रेम के कारण वे उसे केवल कुछ दिन ही लगे। यह सुंदर है। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, 7 साल बस तेजी से बीत गए। इफ जैकब और लाबान धोखेबाज धोखा खा जाता है। 22:49-28:39। क्या अब यह कहानी का अंत है? यह सिर्फ कहानी की शुरुआत है क्योंकि ससुर लाबान को यहाँ एक अच्छा सौदा मिला है। तो आगे क्या होगा? जैकब की शादी की रात यह विडंबनापूर्ण क्यों है? तो जैकब वहां है और वे बड़ी शादी की पार्टी में जाते हैं। सबसे पहले उस संस्कृति में आपको स्त्री का कितना रूप देखने को मिलता है? क्या किसी को सिनाई की वे तस्वीरें याद हैं जब मेरी पत्नी सिनाई में इस महिला के साथ गेंद का खेल आगे पीछे कर रही थी? क्या किसी ने देखा कि उसने इस तरह घूंघट कर रखा है? ये सभी सोने के टुकड़े थे। हम असली सोने की बात कर रहे हैं। आज सोने की कीमत से इसकी कीमत कितनी होगी? लेकिन फिर भी वह इस तरह सोने से लदी हुई थी। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। उन संस्कृतियों में आप महिला को जो देखते हैं वह ज्यादातर उसकी आंखें ही होती हैं। उसके बाकी सभी को कवर किया गया। तो अब वे इस शादी के दृश्य में हैं और आप कहते हैं कि वह अभी भी उसकी आंखों को पहचानेगा, और यह अलग है क्योंकि इसमें कहा गया है कि लिया की कमजोर आंखें थीं। क्या यह संभव है कि महिलाएं तंबू की स्थिति में बदल गईं? अब समस्या क्या है? आप लोग गॉर्डन कॉलेज में हैं। यह स्थान 24 घंटे जगमगाता रहता है। लेकिन जब आप ऐसी जगह पर निकलते हैं जहां आप लाइट जलाने के लिए स्विच नहीं खोलते हैं, तो क्या रात में वास्तव में अंधेरा हो जाता है? और जब आप काले बकरी के बालों से बने बेडोइन तंबू में होते हैं तो अंदर बहुत अंधेरा हो जाता है। क्या आप कभी ऐसे संदर्भ में रहे हैं जहां आप अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रख सकते हैं और आप उसे देख नहीं सकते हैं? इन जगहों पर घुप अंधेरा हो जाता है। तो क्या होता है? वहां एक बड़ा स्विचायक रू है, और वहां क्या होने वाला है? तो मुझे बस पाठ पढ़ने दीजिए। लाबान ने अपनी दासी दी, और जब भोर हुई और याकूब तंबू से निकला तब भोर को उसने घूमकर क्या देखा कि लिया वही है। वह किसकी अपेक्षा कर रहा था? राहेल, क्या उसे धोखा दिया गया था? अब क्या संस्कृति में महिलाएं जिस तरह से खुद को ढकती थीं, उससे धोखा खाना आसान है? संभवतः मेरे लिए यहां चलना बेहतर होगा काइल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मारा जाऊं। हो सकता है, दूसरे शब्दों में कहें तो कोई बड़ी पार्टी थी और पार्टी में बातें भी हुई होंगी, लेकिन जब वे टेंट में गए तो शायद रात में टेंट में सन्नाटा था, बाकी बातें चल रही थीं। मैं शायद उससे बाहर निकलना चाहता हूं। जब मैं यहां हूं तो मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा अफगानिस्तान में था, मैंने आपको पहले बताया था, और वे तालिबान प्रकार के लोगों के साथ लड़ाई में थे। यह सचमुच दिलचस्प था कि वे तीन तालिबानों के पीछे जा रहे थे और अचानक तालिबान गायब हो गए। उसने कहा कि वे भूतों की तरह थे जो बस गायब हो गए, और फिर अचानक उसने सड़क पर देखा और तीन महिलाएं सड़क पर चल रही थीं। अफगानिस्तान में क्या महिलाएं अपने चेहरे को भी पूरी तरह से ढकती हैं और अपने साथ किसी पुरुष के बिना कभी नहीं चलती? उनके पास ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ग्रिड की तरह हैं, जिनसे वे बाहर देखते हैं ताकि आप उनकी आंखों को देख भी न सकें। तो एक व्यक्ति जो एक नौसैनिक था, इन तीन महिलाओं को सड़क पर चलते हुए देखना शुरू कर देता है और वह अपने कमांडर से कहता है कि वह कहता है, चलो उन्हें गोली मार दें, ये वही लोग हैं। और कमांडर कहता है, ओह हाँ ठीक है, हम महिलाओं को गोली मारने जा रहे हैं। नौसैनिक इस तरह की चीजें नहीं करते। और मेरे बेटे ने कहा, नहीं वे लोग हैं। अब प्रश्न, क्या वे ऊपर जाकर इन महिलाओं पर आरोप लगा सकते हैं? आप अफगानिस्तान में हैं, क्या समुद्री सैनिक ऊपर जाकर किसी महिला पर हमला कर सकते हैं? नहीं, यह संस्कृति और नौसैनिकों का उल्लंघन है। मैं आज तक जानता हूं कि इसी तरह वे तीन तालिबान बच गए। उन्होंने महिलाओं का वेश धारण किया और चले गए। वह उनके चलने के तरीके से भी बता सकता था और मूलतः इसी तरह वे भाग निकले थे। वे उन पर आरोप लगाने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उन्हें समझाने के लिए एक महिला दुभाषिया को बुलाना पड़ा। वे ऐसा नहीं कर सके, इसलिए वे लोग भाग गए। क्या महिलाओं की तरह कपड़े पहनना और भाग जाना एक बहुत ही चालाक चाल थी? वैसे भी वास्तव में ऐसा हुआ था। अब मैं बस इतना कह रहा हूं कि वह जाग गया है। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारी शादी हो जाती है और तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी रात होती है। तुम उठते हो और पीछे मुड़ते हो और तुम्हें लिया दिखाई देती है। एक पुरुष के रूप में आप कैसा महसूस करेंगे? कई साल पहले मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया था। यदि आप लिया होते तो आपको कैसा महसूस होता? आपने अभी अभी उसके साथ रात बिताई है और वह मुड़ता है और वह आपकी ओर देखता है और आप उसका चेहरा देखते हैं, क्या यह भयानक है? आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप जानते हैं कि इस तरह अस्वीकार किए जाने पर कैसा महसूस होगा? अब वैसे लिया की बड़ी बहन है। क्या बड़ी और छोटी बहनों के बीच कुछ है? नहीं, मैं गंभीर हूं। मुझे यह झेलना पड़ा है कि मेरे ही परिवार में मेरी छोटी बेटी की शादी पहले हुई। यह अनकहा है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि हमने कभी इस बारे में उन शब्दों में बात की है। क्या छोटी बहन की शादी पहले होने पर कोई बात चल रही है? लाबान क्या करता है? तो वहां एक स्विच चल रहा है। यह विडंबना क्यों है? क्या धोखा देने वाला धोखा खा जाता है? और इस प्रकार याकूब की सारी चालाकी, झूठ बोलना और धोखा देना, अचानक उसकी शादी की रात में धोखेबाज धोखा खा जाता है। यह उस पर एक तरह से सूट करता है। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, अंततः उसे वही मिलता है जो उसके पास आ रहा है। मैं कोई नैतिक लेक्स नहीं बनाना चाहता टैलियोनिस मूल्यांकन, लेकिन यह एक प्रकार की विडंबना है। जी जैकब और बहुविवाह, ऐतिहासिक कथा, प्रामाणिक या गैर मानक। 28:40-35:15। अब जैकब बहुविवाहित है। अब यह तय हो गया है कि लाबान कहता है, ठीक है ठीक है, हमारी संस्कृति में आपको छोटी बेटी पैदा करने से पहले बड़ी बेटी से शादी करनी होती है। तो लाबान कहता है, अरे याकूब, इसमें तुम्हें बस 7 साल और लगेंगे। वे आपको बस कुछ मिनटों की तरह लगेंगे, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, इसलिए मुझे 7 साल और दीजिए। क्या जैकब इन दो लड़कियों के लिए 14 साल तक काम करेगा? लिया के साथ उसका सप्ताह पूरा होने के बाद शायद उसे रेचेल मिल गई। संभवत उसके तुरंत बाद उसने रेचेल को काम सौंप दिया, लेकिन फिर भी उसे 7 साल तक काम करना पड़ा। शायद इसी तरह यह नीचे चला गया। वह छोटे बच्चे के लिए 7 साल और काम करता है। अब जैकब बहुपत्नी है। क्या अमेरिकी संस्कृति में बहुविवाह अच्छा है? क्या किसी ने वॉरेन जेफर्स का अनुसरण किया है? टेक्सास में उस आदमी की ये सभी पत्नियां थीं और उस आदमी को जेल में डाल दिया गया था। मुझे लगता है कि जिन लड़कियों से वह शादी कर रहा था उनमें से कुछ 13 या 14 साल की थीं। सचमुच बहुत खराब चीज है, यह आदमी खराब है। यह बहुत पुरानी मॉर्मन परंपरा का हिस्सा है। जोसेफ स्मिथ की स्वयं कई पत्नियां थीं। सदी के अंत में मॉर्मन ने बहुविवाह को समाप्त कर दिया, लेकिन उनमें से कुछ जो मूल मॉर्मनवाद पर वापस जा रहे हैं, उनकी अभी भी कई पत्नियां हैं। वे इसे आगे बढ़ाते हैं, और जब इसकी निंदा की बात आती है तो उनमें से बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। तो आपको इससे सावधान रहना होगा। जैकब बहुविवाहित था। क्या आप इसका उपयोग यह कहने के लिए कर सकते हैं, याकूब बहुपत्नी था, इसलिए हमें बहुपत्नी होना चाहिए? मैं आपको जो सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि जब आप ऐतिहासिक आख्यानों के साथ काम कर रहे हों, तो आपको जो मानक है और जो गैर मानक है उसके बीच अंतर करना होगा। दूसरे शब्दों में, क्या बाइबल कभी कभी सिर्फ वर्णन करती है कि क्या हुआ और वह उस पर अनुमोदन या अस्वीकृति नहीं डाल रही है? यह तो बस वर्णन कर रहा है कि क्या हुआ, इसका सार्वभौमिकरण करना नहीं है। जैकब अपने पिता से झूठ बोलता है। क्या हमें अपने माता पिता से झूठ बोलना चाहिए? नहीं। क्या जैकब ने वो काम किए जो गलत थे? जैकब ने ऐसे काम किए जो गलत थे, और इसलिए आप चीजों को सीधे इतिहास से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि बाइबल अक्सर इतिहास को दर्ज करती है। जो हुआ वही हुआ, जो हुआ वह सही है या गलत। वैसे यही एक कारण है कि मुझे बाइबल से प्यार है। आप कहते हैं, क्योंकि जैकब बहुविवाह करता है इसलिए तुम्हें बाइबल से प्रेम है। नहीं, मुझे समझाने दीजिए। कई अन्य संस्कृतियों में जब आप मारी के पास जाते हैं और आप जिमरी लिन से बात करने जा रहे हैं और वह मारी का बड़ा राजा है, जब वह राजाओं के इतिहास को एक साथ रखता है, तो क्या यह जिमरी लिन को बड़े शॉट की तरह दिखाने का प्रयास करता है? जिमरी लिन ये सभी महान कार्य करता है। जिमरी लिन के कारण आपका जीवन अच्छा है, जिमरी लिन के कारण आपकी नहरों में पानी है, आदि। क्या अन्य संस्कृतियों में राजाओं को ऐसे लोगों के रूप में चित्रित किया जाता है जो ये सभी अद्भुत कार्य करते हैं? बाइबल में क्या समस्या है? मुझे इसराइल के महान राजाओं के बारे में बताओ। तुम कहते हो, अच्छा, इसराइल के भी अपने बड़े राजा थे। डेविड ईश्वर के अनुरूप व्यक्ति था, और फिर आप सोचना शुरू करते हैं। हाँ, डेविड, उसका नाम क्या था? बतशेबा। हाँ, तो आपको डेविड के साथ पीछे हटना होगा, लेकिन डेविड वास्तव में आदमी है। तो आप कहते हैं सुलेमान, ठीक है, सुलेमान अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान इसराइल का एक बड़ा राजा था। सुलेमान हाँ यह क्या था? 700 पत्नियां, 300 रखेलें और फिर वह अन्य देवताओं की सेवा करता है। ठीक है, तो तुम कहते हो रहूबिया। खैर, वह एक आपदा था और आप राजा की सूची में नीचे जाने लगते हैं। तो क्या बाइबल में सभी राजा, इसराइल के महान लोग, इसराइल के पहले राजा शाऊल, क्या उन सभी को मस्से हैं? क्या उन सभी को समस्याएं हैं? क्या बाइबल उनके मस्सों को छुपाती है? क्या बाइबल उनके पाप को छुपाती है? या क्या बाइबल यह बताती है कि यह कैसा था? तो मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि अन्य संस्कृतियों ने अपने महापुरुषों को इन महान नायकों की तरह बनाया है। बाइबल में उनके सभी नायकों, उनमें से हर एक को समस्याएं हैं। तो इसीलिए मुझे धर्मग्रंथ प्रिय हैं, क्योंकि क्या मुझे भी समस्याएं हैं? उन सभी लोगों को समस्याएं थीं। क्या परमेश्वर ने उनके साथ व्यवहार किया और उनसे प्रेम किया और उनकी परवाह की? हाँ, मुझे भी समस्याएं हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान मुझे फेंक देंगे? नहीं, इसका मतलब है कि भगवान हमारी गलतियों से परे हमसे प्यार करता है। तो बाइबल इसे वैसे ही बताती है जैसे यह है, और यह प्राचीन दुनिया में एक दुर्लभ पुस्तक है। यह सचमुच दुर्लभ है। जैकब को समस्याएं हैं। तथ्य यह है कि जैकब की अब दो पत्नियां हैं। क्या यह एक समस्या होगी? क्या बहुविवाह चलता है? बाइबल आपको परिणाम बताती है। क्या दो पत्नियां रखने से काम चल गया? फिर वे एक प्रतियोगिता शुरू करते हैं कि किसके सबसे अधिक बच्चे होंगे। जब आप इसे देखेंगे तो यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे इस पर वापस आने दीजिए। तो मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वह यह है कि जब आप इतिहास पढ़ रहे हों तो आपको उस चीज को अलग करने में सावधानी बरतनी होगी जो मानक है, जो सर्वकालिक है और जो गैर मानक है। दूसरे शब्दों में, जैकब ने ऐसा किया और यह वास्तव में सही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। तो यह केवल उस समय और उस स्थान के लिए है जो उसने किया था। उसने अपने पिता से झूठ बोला जो हमेशा के लिए नहीं होता। हमें अपने पिताओं से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए जब आप इतिहास के साथ काम कर रहे हों तो आपको मानक और गैर मानक के बीच, विवरण और नुस्खे के बीच अंतर करना होगा। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब भगवान साथ आते हैं और मुझे यह पसंद है, अध्याय 29 में नीचे जाए, याकूब की दो पत्नियां हैं राहेल और लिया, वह किससे प्यार करता है? राहेल, भगवान किसकी कोख खोलते हैं? लिया का ईश्वर दलित व्यक्ति का पक्ष लेता है। आप इसे पवित्र शास्त्र में बार बार देखते हैं। भगवान उस पत्नी का साथ देते हैं जिसे प्यार नहीं किया जाता, और भगवान उसकी कोख खोल देते हैं। क्या रेचेल के बच्चे हो सकते हैं? नहीं, रेचेल के बच्चे नहीं हो सकते। इस प्रकार राहेल का गर्भ बंद है और लिया का गर्भ खुला है। वैसे याकूब यह धोखा देने वाला धोखेबाज है, फिर भी क्या याकूब और राहेल और लिया ने इसराइल के 12 गोत्रों का निर्माण किया है? क्या तुम समझ रहे हो? यहीं से 12 जनजातियां आती हैं। याकूब और राहेल और लिया और उनकी दासियों से इसराइल के 12 गोत्र उत्पन्न हुए। आप कहते हैं कि यदि मैं इसराइल के 12 गोत्रों के बारे में बात करने जा रहा होता तो आप उनकी माँ को थोड़ा और अधिक सम्मानजनक बनाने की कोशिश करते, एक बेहतर कहानी बनाते, लेकिन वास्तव में यह बहुपत्नी संबंध है। भगवान ने लिया की कोख खोल दी। इसके बाद लिया को रूबेन, जो उसका पहला बच्चा था, और उसके बाद कई अन्य बच्चे हुए। एच मैंड्रेक पौधे और उर्वरता 35:16-38:18। हम देखेंगे कि रेचेल के साथ क्या होता है। रेचेल कहती है, अरे मुझे भी कुछ बच्चे पैदा करने की जरूरत है। तो अध्याय 30 श्लोक 14 में क्या होता है, यह कहता है, गेहूं की फसल के दौरान जो वसंत के अंत में है, रूबेन खेतों में गया और उसे कुछ दूदाफल मिले, ये दूदाफल क्या हैं? हमें बताया गया है कि मैंड्रेक के पौधे वही हैं जो सबसे बुजुर्ग रूबेन अपनी मालिया के लिए लाए थे। राहेल ने लिया से कहा, कृपया अपने पुत्र के दूदाफलों में से कुछ मुझे दे, परंतु लिया ने उससे कहा, क्या यह काफी नहीं कि तूने मेरे पति को ले लिया, क्या तू मेरे पुत्रों के दूदाफल भी ले लेगी? लिया यहाँ थोड़ा क्रोधित हो जाती है। लिया कहती है, अरे तुमने मेरे पति को चुरा लिया और अब तुम मेरे बेटे के दूदाफल ले रहे हो, इस मैंड्रेक पौधे के व्यवसाय से क्या संबंध है? बहुत अच्छा, रेचेल कहती है, वह आज रात आपके साथ सो सकता है, तो जैकब को मैंड्रेक के कुछ पौधों के लिए बेच दिया गया। ये महिलाएं अपने पति के साथ सोने के लिए सौदेबाजी कर रही हैं और वे उसे मैंड्रेक के कुछ पौधों के लिए बेच देती हैं। वह आज रात तुम्हारे साथ सो सकता है, बस मुझे दो दूदाफल दे दो, यह आदमी कुछ पौधों के लायक है, बहुत अच्छा नहीं। आप पूछते हैं कि इन मैंड्रेक पौधों के साथ क्या हो रहा है। प्राचीन दुनिया में यह माना जाता है कि ये मैंड्रेक पौधे बड़े पैमाने पर प्रजनन क्षमता के लिए थे। यदि आपको ये मैंड्रेक पौधे मिले हैं तो अब शायद इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इन मैंड्रेक पौधों को उनकी संस्कृति में उर्वरता वाले पौधों के रूप में देखा गया था। हम शायद कहेंगे कामोत्तेजक, आप इसका सेवन करें और यह आपको यौन रूप से शक्तिशाली बनाता है। शायद इसे ही वे प्राचीन वियाग्रा कहते हैं। मैंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन यह प्राचीन रूप है। बेहतर होगा कि हम इससे बाहर निकल जाएं, लेकिन प्राचीन दुनिया में ऐसा ही सोचा गया होगा। अब यहां दिक्कत क्या है? समस्या यह है, रेचेल को उसका बच्चा कौन देगा? क्या ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे दूदाफल मिले हैं? पाठ इसे बहुत स्पष्ट करता है, उसे दूदाफल मिलते हैं, लेकिन पाठ यह भी बहुत स्पष्ट करता है, भगवान राहेल की सुनता है और वह गर्भवती हो जाती है और उसका एक बेटा होता है। लेकिन यदि आप श्लोक 22 में जाते हैं तो यह कहता है, भगवान ने राहेल को याद किया और उसने उसकी बात सुनी और उसने उसका गर्भ खोला और वह गर्भवती हुई और अपने बेटे को जन्म दिया। और उसने कहा, भगवान ने मेरा अपमान दूर कर दिया है और उसने उसका नाम उसके पहले बेटे रखा। और यह महत्वपूर्ण है, राहेल का पहला बेटा कौन था? जोसेफ। परमेश्वर ने मुझे जोड़ा है, यहोवा ने मुझे जोड़ा है, यहोवा मुझ में एक और पुत्र जोड़ दे, तो राहेल का एक बेटा है। राहेल को उसका बेटा कौन देता है? क्या यह दूदाफल का परिणाम है? नहीं, परमेश्वर ने उसकी कोख खोली और उसके पास यूसुफ है। आए जोसेफ रेचेल का पहला जन्म है, 38:19-40:03। क्या जोसेफ एक रत्न बनने जा रहा है? जोसेफ बाइबल के कुछ रत्नों में से एक है, डैनियल पुराने नियम का दूसरा रत्न है। ये दोनों लोग निंदा से ऊपर हैं, लेकिन अन्य सभी लोगों को समस्याएं हैं, लेकिन जोसेफ वास्तव में एक अच्छा लड़का बनने जा रहा है। तो उसका पहला बेटा जोसेफ दूदाफल का परिणाम नहीं था, भगवान ऐसा करता है। वैसे यूसुफ राहेल का पहला बेटा था, राहेल का आखिरी बेटा कौन था? बेंजामिन। बेन या मिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, बेन का अर्थ है का बेटा, यामिन का अर्थ है दाहिना हाथ, उन संस्कृतियों में आपका दाहिना हाथ सम्मान का हाथ था। मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप अरब संस्कृति में हैं और अरब व्यक्ति आकर अपना बायां हाथ हिलाता है तो क्या आप समझते हैं कि यह एक बड़ा अपमान है? दाहिना हाथ सम्मान और आशीर्वाद का हाथ है। यदि वह अपने बाएं हाथ से कांपता है तो इसका क्या मतलब है? वे घर के कुछ कमरों में फ्लश करने से पहले अपने बाएं हाथ से कुछ चीजें करते हैं और केवल अपने बाएं हाथ से, यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। यह हमेशा बाएं हाथ से टॉयलेट पेपर के साथ या उसके बिना किया जाता है। ठीक है, अब समझें कि आप अमेरिकी हैं, लेकिन वहां कभी कभी उनके पास विलासिता नहीं होती है, और मैं टॉयलेट पेपर के बारे में बात कर रहा हूं। अब इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने बाएं हाथ से आपका हाथ हिलाता है, तो मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि यह एक बड़ा अपमान है। इससे पहले कि मैं जानता, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने सोचा, यह सचमुच अजीब है, और मैं वापस गया और किसी से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि इसका क्या मतलब है। तो आप ऐसा नहीं करना चाहते। आप दाहिने हाथ से हिलाते हैं, सम्मान का हाथ बाएं हाथ से नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। मेरे दाहिने हाथ का बेटा बेंजामिन एक सुंदर नाम है। मेरे पोते का नाम बेंजामिन है। मेरे दाहिने हाथ का बेटा आशीर्वाद, शक्ति और उस जैसी चीजों का बेटा। इस प्रकार बिन्यामीन और यूसुफ राहेल के दो पुत्र होंगे। बेथलहम में जे राचेल की मृत्यु और बाइबल की गूंज 40:04-43:39। राहेल कहाँ मरती है? वह बेंजामिन को जन्म देते ही मर जाती है। अब क्या हमारी संस्कृति में महिलाएं बच्चे पैदा करते हुए मर जाती हैं? आमतौर पर अमेरिकी संस्कृति में नहीं, लेकिन दुनिया के अन्य स्थानों में महिलाएं बच्चे पैदा करते हुए मर जाती हैं। यह हर जगह होता है। राहेल जन्म के समय बेंजामिन के साथ मरने वाली है। अब क्या होगा? वह कहां मरती है? यह महत्वपूर्ण हो जाता है। राहेल मर जाती है, लेकिन वह कहां मरती है? वह बेथलहम नामक शहर के ठीक बाहर मर जाती है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? उनकी मृत्यु के कारण उन्होंने उनके लिए एक स्मारक स्थापित किया। उन्होंने प्रमुख रिज रूट राजमार्ग पर एक स्मारक स्थापित किया जो इसराइल की रीढ़ की हड्डी तक जाता है। उन्होंने बेथलहम के बाहर राहेल के लिए एक स्मारक स्थापित किया और उसे बेथलहम की कुलमाता के रूप में देखा जाता है। अब यीशु के समय में क्या किसी को याद है कि मैथ्यू अध्याय 2:18 में यीशु के समय में राहेल का उल्लेख किया गया है? और मैथ्यू अध्याय 2 में क्या होता है? कौन जानता है कि यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ था? बुद्धिमान लोग हेरोदेस के पास आए और हेरोदेस ने कहा, बेथलहम जाओ और उस छोटे बच्चे को ढूंढो और जब वह मिल जाए तो मेरे पास लौट आओ। क्या बुद्धिमान लोग कभी हेरोदेस के पास वापस गए? नहीं, वे वहां से भाग निकले। जब हेरोदेस को पता चलता है कि बुद्धिमान लोगों ने उसे धोखा दिया है, तो हेरोदेस क्या करता है? वह बेथलहम जाता है और 2 वर्ष और उससे कम उम्र के सभी शिशुओं को मार डालता है। क्या आपको याद है कि बाइबल के ग्रंथ वहां क्या कहते हैं? मैथ्यू 2:18 बेथलहम के शिशुओं की हत्या के ठीक बाद यह कहता है, और राम में उत्तर की ओर काफी दूरी पर रोने की एक आवाज सुनाई दी और महान सुबह राहेल अपने बच्चों के इनकार के लिए रो रही थी, सांत्वना दीजिए क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो आपको जो मिलता है वह इस प्रकार की प्रतिध्वनि है। रेचेल की बेथलहम के बाहर मृत्यु हो जाती है और 2000 साल बाद आपको यीशु के साथ यह प्रतिध्वनि मिलती है। राहेल अपने बच्चों, बेथलहम के बच्चों के लिए रो रही है क्योंकि वह बेथलहम की कुलमाता है। तो मूल रूप से आपको यह प्रतिध्वनि मिलती है और वह यीशु के समय में है। लेकिन आप कहते हैं, हिल्लेब्रांट, आप कुछ भूल गए क्योंकि मैथ्यू यिर्मयाह को उद्धृत कर रहा है। यिर्मयाह कहता है, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, यह रामा तक सुनाई दे रहा है। यिर्मयाह यह क्यों उद्धृत कर रहा है कि चूंकि यिर्मयाह याकूब और यीशु के बीच में है? यिर्मयाह ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि तभी लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया था। यह बेबीलोन का निर्वासन है जिसका जिक्र यिर्मयाह कर रहा है, जब डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो और उन सभी लोगों को बेबीलोन में ले जाया जाता है। यिर्मयाह यरूशलेम के विनाश का जिक्र करते हुए कह रहा है कि यरूशलेम नष्ट हो गया है और राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है क्योंकि उन्हें बाबुल ले जाया जा रहा है। तो आपको यह प्रतिध्वनि बेथलहम के बाहर राहेल की मृत्यु से मिलती है, फिर आपको यह प्रतिध्वनि वहां से मिलती है जहां बच्चों को बेबीलोन में निर्वासित किया जाता है और फिर यीशु मसीह तक जो पैदा हुआ है और उन शिशुओं को मार दिया गया है। तो आपको पवित्र शास्त्र के माध्यम से इस तरह की त्रय प्रतिध्वनि मिलती है और रेचेल के बेथलहम के बाहर मरने के साथ यह वास्तव में दिलचस्प है। आप आज भी वहां जा सकते हैं और बेथलहम के बाहर रेचेल का स्मारक आज भी देख सकते हैं। के राचेल और पारिवारिक देवता 43:40-46:11। तो रेचेल मर गई, अब क्या होगा? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जैकब मेसोपोटामिया छोड़ने जा रहा है, इसलिए वह दरवाजे के बाहर से लाबान छोड़ने जा रहा है। लाबान ने उसे उधेड़ दिया और उसने लाबान को भी उधेड़ दिया। वे आगे पीछे होते रहते हैं और इसलिए उसका परिवार निकलना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वे जाना शुरू करते हैं, और यह अध्याय 31 में है, राहेल परिवार के देवताओं में से एक को चुरा लेती है। लाबान याकूब का पीछा करता है और याकूब को पकड़ लेता है और कहता है, याकूब तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? तुमने मेरा सारा सामान चुरा लिया, तुमने मेरी बेटियां चुरा ली, तुमने मेरे पोते पोतियां चुरा ली, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। तुम क्या कर रहे हो जैकब? इसके अलावा याकूब, तुमने मेरे देवताओं को भी चुरा लिया है। याकूब ने विरोध किया, मैंने तुम्हारे देवताओं को नहीं चुराया। तुम अपने देवताओं के साथ जिस किसी को भी पाओ तुम उसे मार सकते हो। मैंने तुम्हारे देवताओं को नहीं लिया। मैं किसी भी तरह आपके मूर्ख देवताओं को नहीं चाहता। खैर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि हमें बाद में पता चलेगा कि जैकब शायद विदेशी देवताओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। क्या होता है? लाबान अंदर आता है और पिता अपनी बेटी राहेल के पास जाता है। आप जानते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के पास कैसे जाता है और बेटी उसकी ओर देखती है। लाबान अपनी भेड़े चराने गया था और राहेल ने कुल देवताओं को चुरा लिया। लाबान पीछा करता है और फिर राहेल अपने पिता से कहती है, गुस्सा मत करो मेरे स्वामी, मैं अब खड़ी नहीं हो सकती, मुझे अब किंग जेम्स संस्करण का उपयोग करने दें क्योंकि मुझे यह बेहतर लगता है। पिता, मैं अब खड़ी नहीं हो सकती, महिलाओं का आचरण मुझ पर है तो वह कुल देवताओं पर बैठी है। वह कहती है, मैं उठ नहीं सकती पिताजी, क्योंकि आप जानते हैं कि यह महीने का वह समय है, इसलिए मैं उठ नहीं सकता। क्या वह बहुत चालाक है? राचेल अपने पिता से झूठ बोलती है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि जिस भगवान पर वह बैठी है वह कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि आपको याद रखना होगा कि आपके पास आदिवासी देवता हैं, बड़े देवता, लेकिन जब आप पारिवारिक देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो आप 6 इंच के देवताओं की बात कर रहे हैं। वह कुल देवताओं को क्यों चाहती थी? कुछ लोगों का सुझाव है कि जिसके भी कुल देवता होते हैं उसे विरासत मिलती है और इसलिए वह 20 साल बाद आ सकती है और कह सकती है, पिताजी देखिए मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे विरासत का एक हिस्सा मिलता है। तो इसमें कुछ संभावित विरासत अधिकार शामिल थे। पिछली कक्षा में किसी ने सुझाव दिया था, यह एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव था, कि शायद देवताओं का संबंध प्रजनन क्षमता से था और रेचेल यह कहने की कोशिश कर रही थी कि वह पारिवारिक देवताओं की सेवा करने जा रही है ताकि वह अधिक उपजाऊ हो सके। क्या सचमुच देवताओं ने उसे बच्चे दिए थे? नहीं, यहोवा ने उसे बच्चे दिए, लेकिन वह शायद दूसरे देवताओं के साथ खेल रही होगी। ठीक है, वह अन्य देवताओं के साथ खेल रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह विरासत है, लेकिन प्रजन विकल्प के बारे में कक्षा में यह एक दिलचस्प सुझाव था क्योंकि प्रजन देवता थे। पेनियल में एल जैकब एसाव बैठक 46:12-57:40। अब आइए अध्याय 32 में कुश्ती मैच पर चलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जब जैकब हारान से मेसोपोटामिया से नीचे आ रहा था तो वह दमिश्क से गुजरा। वह उस पर है जिसे वे किंग्स हाईवे कहते हैं। वह ठीक नीचे आता है जहां यह काली शर्ट वाला व्यक्ति है। वहां एक वाड़ी है, एक घाटी है जो नीचे की ओर जाती है, उसे वाड़ी जब्बोक कहा जाता है। वे इसे यब्बोक नदी कहते हैं। मैं यब्बोक नदी पर जाना कभी नहीं भूलूंगा। मैं वहां जाता हूं, मैं इस जब्बोक नदी की तलाश कर रहा हूं, है ना? यह कुछ फीट चौड़ा था। मैं इंच गहराई की बात कर रहा हूं। हां, मैंने इसे देखा और कहा कि मैं जहां से आया हूं वह खाई के लिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने इससे भी बड़ी खाई देखी है, और मैं वास्तव में निराश था क्योंकि मैं यब्बोक नदी की आशा कर रहा था। मैं वहां पहुंच गया हूं और सचमुच आप इसके ऊपर से छलांग लगा सकते थे और यह केवल लगभग इंच गहरा था। तो क्या आप समझते हैं कि क्या उनमें पानी बहुत कम है? मैं नियाग्रा नदी पर पलाबधा हूं। यह एक वास्तविक नदी है। ये बातें जब वे बात करते थे, जब मैं छोटा था तो वे कहते थे, मैंने शक्तिशाली जॉर्डन को रोल करते देखा है। क्या आपने कभी देखा है कि शक्तिशाली जॉर्डन नदी इस कमरे जितनी चौड़ी है? यह औसतन 3 फीट गहरी है। अब मैं कहां से आया हूं, क्या हम उन नदियों को कहते हैं? नियाग्रा एक नदी थी, जहां मैं पलाबधा हूं, वे उसे खाड़ियां कहते हैं। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि क्या वहां पानी बहुत कम है? अमेरिका में हम एरी झील और सुपीरियर झील के आदि हैं। क्या आप कभी सुपीरियर झील पर गए हैं? ओह, तुम लोग यहां सागर करते हो। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हमारे पास बहुत अधिक पानी है, वहां बहुत कम है। तो क्या होता है? याकूब नीचे आ रहा है और एसाव कहां है? यह मृत सागर है। एसाव यहीं से एदोम देश में है। एसाव अपने 400 पुरुषों के साथ उत्तर की ओर जा रहा है। अब क्या इससे कोई समस्या होगी? ठीक है, याकूब अपने 400 आदमियों के साथ एसाव से मिलने जा रहा है। क्या जैकब मौत से डर गया है? क्या किसी को कराटे किड 2 याद है? जहां सातों को इतने वर्षों के बाद मिस्टर मिर्यागी मिलने वाली थी क्योंकि वह अभी भी उसकी पत्नी को चुराने के कारण उससे नाराज था और वह इतने वर्षों के बाद मिर्यागी को मारने जा रहा था। क्या लोग दशकों तक गुस्सा पालते हैं? एक परिवार के अंदर, मैं आपके अपने परिवारों के बारे में बात कर रहा हूं, क्या भाई बहन, पिता और परिवार क्या कभी पीढ़ियों तक अक्सर 10-20 साल तक किसी के प्रति गुस्सा रखते हैं? मैं हर्ब किंग नाम के एक व्यक्ति को जानता था। मैंने अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में काम किया था और हर्ब हत्या के आरोप में 35 साल तक जेल में था। आखिरकार वह बाहर निकला एक बूढ़े व्यक्ति की तरह। जब वह बाहर निकला उसकी उम्र 50 के आसपास थी। उन्होंने उसे उसके 75 रुपए दिए और उसने इंडियाना स्टेट जेल से जॉर्जिया के लिए बस पकड़ी जहां से वह था। 35 वर्षों के बाद वह अपने घर के दरवाजे पर आया और यह ईमानदार सच्चाई है। और वैसे मैं अब उसका असली नाम उपयोग कर रहा हूं क्योंकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह 35 वर्षों के बाद किसी प्रायश्चितालय में आए। वह अंतःमुक्त हो गया और वह अपने घर में चला गया और वहां 12 गेज वाला एक लड़का था। जिस दिन वह उसके घर में गया तो उसके होश उड़ गए। 35 साल बाद उस आदमी ने उसे मार डाला, गोली मार कर हत्या कर दी। वह सामने के दरवाजे में चला गया, सीने में गोली लगी। वह मर चुका है। प्रश्न, क्या वह व्यक्ति जेल में रहते हुए 35 वर्षों से हर्ब के प्रति क्रोधित था? 35 साल बाद अब जड़ी बूटी कब्रिस्तान में है, क्या लोग उस तरह की नाराजगी रखते हैं? जब जैकब ने सुना कि एसाव 400 लोगों के साथ आ रहा है, तो क्या उसका मन डर गया? आखिरी बार जब उसने एसाव को देखा, तो एसाव ने कसम खाई कि वह उसे मार डालेगा, और उसके साथ 400 लोग हैं। जैकब के पास क्या है? महिलाओं और बच्चों का झुंड। क्या जैकब अपना बचाव कर सकता है? वह नहीं कर सकता। अब वैसे क्या जैकब एक आदमी का आदमी है? मुझे जैकब से समस्या है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे उसके बारे में वास्तव में परेशान करती हैं। जब एसाव उसके पास आता है, तो सबसे पहले वह एसाव को उपहार भेजता है। क्या यह सचमुच एक स्मार्ट चीज है? कोई सचमुच आप पर क्रोधित है, क्या आप उपहार देते हैं? मैं फूल आजमाता हूँ। उपहार कभी कभी काम आते हैं, हर समय नहीं, लेकिन कभी कभी। यह आजमाने के काबिल है। फूल अच्छे हैं, ठीक है। आपको लगभग 50/50 मिलते हैं। चॉकलेट भी काम करती है, और आपको इस पर काम करना होगा। इसलिए वह एसाव को उपहार भेजता है। क्या उपहार गुस्सा शांत करते हैं? कभी कभी वे ऐसा करते हैं। वह डरा हुआ है, तो वह क्या करता है? वह अपने परिवार को विभाजित करता है, और वह पहले किसे रखता है? वह एक आदमी का आदमी है, और इसलिए वह कहता है, अरे यह मेरा भाई है, वह मुझे मारने आ रहा है, मुझे सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए, इसलिए तुम लोग पीछे छिप जाओ। अगर वह मुझे मारता है या मेरे पीछे जाता है, तो तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना। क्या वह जैकब है? नहीं, यह आदमी क्या करता है? वह लिया और बच्चों को आगे रखता है, और रेचल को पीछे रखता है, और वह कहाँ है? वह बहुत पीछे है। क्या यह एक आदमी का आदमी है? मुझे माफ करें, मेरे मन में जो शब्द आता है वह है कायर। क्या एक पिता को यही करना चाहिए? क्या एक पिता को अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए, या उसे अपने परिवार के पीछे छुप जाना चाहिए? ठीक है, मुझे खेद है कि यह वास्तव में मुझे उसके बारे में परेशान करता है। यह उतना ही कम है जितना आप मेरी किताब में पा सकते हैं। तो क्या होता है? उस रात वह जब्बोक वाड़ी में था। वह स्वयं वहां नीचे है, और अचानक उसके पास यह कुश्ती मैच है। मुझे यहां श्लोक 24 देखने दीजिए और इसकी जांच करने दीजिए। इसमें कहा गया है, उस रात याकूब उठा और अपनी दोनों पत्नियों और दासियों को ले गया, और याकूब अकेला रह गया, और एक आदमी दिन चढ़ने तक उससे कुश्ती करता रहा। और जब उस आदमी ने देखा कि वह उस पर काबू नहीं पा सकता, तो उसने उसे छू लिया। उस आदमी ने देखा कि वह उस पर काबू नहीं पा सकता। यह बहुत दिलचस्प है। क्या जैकब इस आदमी के साथ आमने सामने जाने में सक्षम है? इसलिए वह आदमी उस पर हावी नहीं हो सका, लेकिन फिर आखिरकार उस आदमी ने उसके कूल्हे के सॉकेट को छुआ और अपने कूल्हे को बाहर कर दिया। इसलिए उस आदमी के साथ कुश्ती करते समय उसका कूल्हा ऐंठ गया। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे जाने दो क्योंकि दिन निकल चुका है। और याकूब ने कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या याकूब सचमुच इस आशीर्वाद की बात में है? जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उस आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? याकूब उसने उत्तर दिया, और उस आदमी ने कहा, तुम्हारा नाम अब याकूब नहीं बल्कि इज़राइल है। सबसे पहले जब आप मुसीबत में होते हैं, तो क्या आप प्रार्थना करते हैं? याकूब मुसीबत में है, उसे एसाव का सामना करना है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो क्या आप प्रार्थना करते हैं? हाँ, जैकब प्रार्थना करता है। सबसे पहले बात करते हैं जैकब के नाम की। जैकब के नाम का मतलब क्या है? यह एक तरह से धोखेबाज जैसा लगता है और अब उसे नया नाम इज़राइल दिया जाने वाला है। इज़राइल का क्या मतलब है? इज़राइल एल का अर्थ है ईश्वर। इज़राइल का अर्थ है वह जो ईश्वर के साथ संघर्ष करता है। वैसे क्या इज़राइल नाम हमेशा के लिए यहूदियों का वर्णन करता है? क्या यहूदियों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, सहस्राब्दी दर सहस्राब्दी तक ईश्वर के साथ कुश्ती लड़ी है? यहूदियों ने ईश्वर के साथ संघर्ष किया है और इसलिए उनका नाम इज़राइल रखा गया है। वह जो ईश्वर के साथ संघर्ष करता है, यह राष्ट्रीय नाम इज़राइल की शुरुआत बन जाता है जो जैकब से निकली 12 जनजातियों को दिया गया है। जैकब को एक नया नाम दिया गया है और यह वास्तव में एक अच्छी बात है। वह धोखेबाज से वह जो कुश्ती करता है या भगवान के साथ संघर्ष करता है बन जाता है। अब जैकब ने उस स्थान का नाम पेनियल रखा। जब आप पेनियल शब्द को देखते हैं तो पेनी का अर्थ है चेहरा, एल का अर्थ है भगवान, जगह के नाम का अर्थ है भगवान का चेहरा। जैकब ने इसका नाम पेनियल क्यों रखा? पाठ हमें स्पष्ट रूप से बताता है। इसमें कहा गया है, मैं इसे पेनियल या भगवान का चेहरा कहने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने भगवान को आमने सामने देखा और मेरी जान बच गई। जैकब को लगा कि वह किससे कुश्ती लड़ रहा है? एक आदमी नहीं, उनका कहना है कि यह सिर्फ एक आदमी नहीं था। हाँ, उसे आदमी कहा जाता था, लेकिन मैंने भगवान को आमने सामने देखा, इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम पेनियल रखा। लोगों ने जो सुझाव दिया है और मैं इससे सहमत हूँ वह यह है कि पुराने नियम में जिसे थियोफनी या क्रिस्टोफनी कहा गया है वह आपके पास है। थियोफनी का अर्थ है कि किसी ने ईश्वर को देखा। क्या आपको याद है सिनाई पर्वत पर भगवान पर्वत की चोटी पर थे? पहाड़ हिल रहा है, मूसा वहां ऊपर है और उसका चेहरा चमकता है और वह नीचे आता है। यह एक थियोफनी है जहां भगवान प्रकट होते हैं। यह लोगों को उड़ा देता है और महिमा लोगों पर हावी हो जाती है। वह थियोफनी है, ईश्वर का स्वरूप है। क्रिस्टोफनी वास्तव में ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा मसीह की उपस्थिति है। मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वह यह है कि जैकब ने एक आदमी के साथ कुश्ती लड़ी और वह आदमी उसे हरा नहीं सका। वह तब तक दूर नहीं जा सका जब तक उसने जैकब के कूल्हे को नहीं छुआ और उसे बाहर नहीं निकाला। मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वह यह है कि बहुत संभव है कि आदमी पहले से ही देह में यीशु मसीह था। यीशु मसीह अपनी सामान्य शक्ति के साथ सुबह तक जैकब के साथ कुश्ती कर रहे थे और फिर उन्होंने अपना कूल्हा बाहर निकाला। इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूँ कि यह क्रिस्टोफनी थी। जैकब ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई सामान्य आदमी नहीं था। मैंने भगवान को आमने सामने देखा और यदि आदमी यीशु था तो वह भगवान है। तो क्या इसका कोई मतलब बनता है? मैं इसे इसी तरह देखता हूँ और कई अन्य लोग भी इसे इसी तरह देखते हैं। देवदूत ने अपना नाम क्यों बदला? धोखेबाज से वह जो परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ता है, अब उसने ईश्वर को आमने सामने देखा है और उसके साथ कुश्ती लड़ी है और हम सुझाव दे रहे हैं कि वह यीशु है। कुछ लोग अध्याय 32 श्लोक 32 को देखते हैं और सबसे पहले मुझे आपको यह पढ़ने दें। जब वह पेनियल के पास से गुजरा तो सूरज उसके ऊपर उग आया और वह अपने कूल्हे के कारण लंगड़ा रहा था। उसे सुबह एसाव से मिलना है। आप में से कितने लोगों ने कभी सपने देखे हैं और कोई बड़ा आदमी या कुछ और आपके पीछे पड़ा है और आप हमेशा कुछ भी कर सकते हैं? आप हमेशा भाग सकते हैं। तुम हमेशा भागते हो और बच जाते हो। अब भगवान जैकब के साथ क्या करते हैं? जैकब का कूल्हा चला गया है। क्या याकूब एसाव से भाग सकता है? नहीं, वह अब भाग नहीं सकता, उसे एसाव का सामना करना होगा। दूसरे शब्दों में, वह नियंत्रण में नहीं रह सकता और कह सकता है कि मैं बस भागने जा रहा हूँ, मैं उससे दूर भागने वाला हूँ, कम से कम मैं उससे बच सकता हूँ क्योंकि मैं उससे तेज हूँ। अब अपने कूल्हे बाहर निकालकर उसे एसाव का आमने सामने सामना करना होगा और वह बच नहीं सकता। अब अध्याय 32 श्लोक 32 में यह कहा गया है, कुछ लोग सोचते हैं कि यह श्लोक बाद के संपादकों द्वारा बाद में जोड़ा गया था। आज तक इसराइली कूल्हे की सॉकेट से जुड़ी कंडरा नहीं खाते हैं क्योंकि जैकब के कूल्हे की सॉकेट निकट छू गई थी कंडरा, तो पाठ कहता है आज तक जैकब के कूल्हे के कारण वे अभी भी कूल्हे के पास मौजूद कंडरा को नहीं खाते हैं आज तक। क्या वह कथन बाद में जोड़ा गया था? कथा आपको जैकब के बारे में बता रही है। हम इसे आज तक नहीं खाते, ऐसा लगता है कि इसे बाद में जोड़ा गया है। क्या मूसा याकूब से बहुत बाद में है? हाँ, कम से कम 400 वर्ष। क्या यह संभव है कि मूसा ने लिखा हम अभी भी कंडरा नहीं खाते और यह 400 साल बाद हुआ? क्या उत्पत्ति 32:32 में यह कथन मूसा द्वारा लिखा गया होगा? निश्चित ही यह हो सकता था। मूसा 400 साल बाद है और उसने यह व्याख्यात्मक बयान दिया है कि वे कूल्हे की सॉकेट के पास मौजूद टेंडन को क्यों नहीं खाते हैं। इसलिए इसे बाद में मूसा के समय के बाद जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मूसा इसे लिख सकता था। एल जैकब की मुलाकात और एसाव से झूठ 57:41-63। अब हम एसाव के साथ बैठक पर आते हैं। परिवार के सदस्य सालों साल मिलते हैं और आखिरकार मिल ही जाते हैं। एसाव अपने भाई पर गिर पड़ता है और वह रो रहा है और गले लगा रहा है, आखिरकार इतने समय के बाद। क्या आप लोग कभी लंबे समय तक भाइयों से दूर रहे हैं? आप वहां वापस आएं और यह खूबसूरत बात है कि आपके उस भाई या बहन जैसा कोई नहीं है जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। इसलिए वे वर्षों बाद मिलते हैं और यह वास्तव में एक खूबसूरत समय है। अब क्या याकूब एक बार फिर अपने भाई एसाव से झूठ बोलता है? इसका उत्तर यह है कि इस बार के बाद जैकब फिर से झूठ बोलने जा रहा है। वे वाड़ी जब्बोक में मिल रहे हैं। एसाव अपने 400 लोगों के साथ आता है। वह जैकब से कहता है, जैकब, मुझे तुम्हारे उपहार नहीं चाहिए, अपने उपहार वापस ले लो, मैं अमीर हूं। तुम नीचे आकर मेरी जगह क्यों नहीं देखते? मैं मृत सागर के नीचे इन सभी लाल चट्टानों, न्यूबियन बलुआ पत्थर, पेट्रा में रहता हूं। यह नीचे बहुत सुंदर है। तुम नीचे आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? जैकब कहते हैं, ओह हाँ, मैं नीचे आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। इसलिए एसाव ने कहा, ठीक है, मेरे लोग तुम्हारे लिए तुम्हारी भेड़बकरियों की रक्षा करेंगे और हम साथ साथ चलेंगे। लेकिन जैकब कहता है, नहीं नहीं, मेरी भेड़बकरियों को धीरे धीरे चलना होगा। इसलिए एसाव, तुम घर वापस जाओ और मैं नीचे आकर तुमसे मिलूंगा। तुम बस घर वापस जाओ। अब यदि आप भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि उसने झूठ बोला था। जैकब कहाँ है? जैकब वहां पर है। एसाव घर वापस चला गया। पाठ में अगली बात जो आपने पढ़ी, अध्याय 34 के अगले अध्याय में, जैकब कहाँ है? जैकब यहाँ शेकेम में है और यहीं उसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है। क्या याकूब ने एसाव से झूठ बोला था कि वह उससे यहीं मिलने जा रहा है और फिर वह विपरीत दिशा में चला गया? क्या यह आदमी अब भी लोगों से झूठ बोल रहा है? यह आपको पागल कर देता है, इतने समय बाद भी वह अपने भाई से झूठ बोलता है। वैसे यह तो आप भूगोल से जानते हैं। अब यही वह जगह है जहां एसाव उतरता है और मुझे यहां से गुजरने की इजाजत देता है। एसाव एदोमियों का पिता बना। एदोमी लोग उसके वंशज हैं। इसलिए जब भी आप पवित्र शास्त्र में एदोम या एदोमियों को देखते हैं तो वे एसाव के वंशज हैं। वैसे मुझे यह कहना चाहिए कि जब भी आप पवित्र शास्त्र में एदोमियों को देखेंगे तो एदोमवासी हमेशा लगभग वही कार्य करेंगे। एदोमी लोग क्या करते हैं? वे यहूदियों को मारते हैं। जब आप उन्हें पवित्र शास्त्र में देखते हैं और आप एदोमियों को याद करते हैं तो हिल्डेब्रांट कहते हैं, जब भी आप एक एदोमाइट को देखते हैं तो वह एक यहूदी को मारने जा रहा है। मैं गंभीर हूं कि ऐसा होता है। मैं जाहिर तौर पर बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर समय एदोमी लोग यहूदियों को मार रहे हैं। ओबद्याह की पूरी किताब का सारांश दिया जा सकता है। ओबद्याह का केवल एक अध्याय, लेकिन पूरी किताब एदोमियों के बारे में है और कैसे एदोमियों ने यहूदियों को मार डाला। असहाय स्थिति में लोगों की हत्या करने के कारण उन पर श्राप आता है। इसलिए ओबद्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक मुख्यतः एदोमियों के विरुद्ध है। अब सबसे प्रसिद्ध एडोमाइट जिसे आप जानते हैं उसका नाम हेरोदेस है। हेरोदेस एक इडुमियन था। क्या आप डी और एम सुनते हैं? यह वही डी और एम एडोम है। हेरोदेस एक इडुमियन था। इसका मतलब था कि राजा हेरोदेस यहूदियों का राजा एक एडोमाइट था। अब यह कैसे हुआ कि आप एक एडोमाइट हैं और आप यहूदियों पर राजा हैं? खैर, यदि आप यहूदी नहीं हो सकते तो अगली सबसे अच्छी चीज क्या है जो आप कर सकते हैं? तो जब हेरोदेस किसी से विवाह करने जाता है तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? एक यहूदी राजकुमारी। क्या आपने कभी मैकाबीज के बारे में सुना है? हेरोदेस मैकाबीन राजकुमारियों में से एक को चुनता है। उसका नाम मरियम ने था और वह मैकाबीन वंश की एक राजकुमारी थी। क्या यहूदी मैकाबीज का सम्मान करते हैं? मैकाबीज ने उन्हें हनुक्का की दावत दी। यहूदी मैकाबीज का आदर करते थे क्योंकि वे नायक थे। वह मैकाबी की लड़कियों में से एक से शादी करता है। अब हेरोदेस को क्या समस्या है? क्या हेरोदेस लोगों को मारता है? वह अपनी ही पत्नी मरियमने को मार डालता है। वह एक यहूदी राजकुमारी है। क्या यह आदमी सचमुच मूर्ख है? क्या किसी को एंथोनी और क्लियोपेट्रा याद हैं? आप मार्क एंथोनी को भी जानते हैं क्योंकि वह अभी भी गा रहे हैं। क्लियोपेट्रा हेरोदेस से नफरत करती थी। हेरोदेस ने अपनी पत्नी को मार डाला और हेरोदेस ने अपने बेटों को भी मार डाला। हेरोदेस ने इस जगह को न्यू टेस्टामेंट जेरिको में बनाया था और मेरा बेटा वहां था और यह कंटीले तारों से ढका हुआ है क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप वहां प्रवेश करें। परंतु हेरोदेस अपने पुत्रों को इन तालाबों में ले गया जो उसने बनाए थे और उसने अपने कुछ आदमियों से अपने पुत्रों में से एक को डुबा दिया। क्या यह आदमी कसाई है? इसलिए जब मैं वहां गया तो हम कंटीले तारों पर चढ़ गए और मुझे तस्वीरें लेनी थीं। इसलिए मैंने अपने बेटे को रखा और उसे कोई इतिहास नहीं पता। वह कंप्यूटर का जानकार है, इसलिए मैंने उसे पूल में रखा और एक तस्वीर ली। मैं अपना हाथ उसके सिर पर रखने जा रहा था जैसे कि मैं उसे नीचे या कुछ और धक्का दे रहा था, लेकिन जब तक वे आए और हमें भगाया तब तक मुझे एक तस्वीर मिल गई। हमें वहां नहीं होना चाहिए था। हम कंटीले तार से फट गए। आपको उस कंटीले तार से सावधान रहना होगा जो आपको फंसाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका से ऐसी किसी जगह पर आने वाले हैं तो क्या आप एक छोटे कंटीले तार को आपको रोकने देंगे? नहीं, मुझे आशा है कि आप में उससे थोड़ा अधिक साहस होगा। लेकिन तब आप तेजी से दौड़ने में भी सक्षम होंगे कोई भी आपके कूल्हे को नहीं छू रहा होगा। कोई कहता है, तुमने सच में ऐसा नहीं किया। हाँ, मैंने किया। वह नहीं जानता था। यह यहाँ का नमक सागर है। आप लोग इसे मृत सागर कहते हैं, समुद्र तल से 1270 फीट नीचे। यहाँ जॉर्डन नदी और गलील सागर है। यह देश जॉर्डन और भूमध्य सागर है। एसाव यहाँ मृत सागर के दक्षिण पूर्व में एदोम में है।
63:32-68:51, 35, 98, 98, 68.
और इसलिए आप इस आदमी के अनुभव के साथ कैसे बहस करते हैं, तो मैं अपने दिमाग में इन सभी कारणों के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा है। आमतौर पर मुझे एक स्मार्ट व्हिप्पी उत्तर मिल गया है। अब मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ। यह आदमी मुझे अपने अनुभव से बता रहा है, मैं क्या करूँ? मेरे लिए सौभाग्य से बूढ़ा रॉबर्ट सामने था। वह एक बुजुर्ग अश्वेत व्यक्ति था जो सामने बैठा था। वह मुड़ता है, सीधे प्रोबो के चेहरे पर देखता है और कहता है, प्रोबो, यह सही नहीं है। वह कहता है, मैंने वह किया है। मैंने कहा, ठीक है, ठीक है। पाठ्यक्रम समाप्त होने से कुछ समय पहले यदि मैं भूल जाता हूँ और कोई मुझे प्रोबो में वापस आने के लिए कहता है, तो उस कहानी का एक अच्छा अंत होगा। इसलिए मोआब और आमोन दो महत्वपूर्ण जनजातीय समूह हैं जिन्हें हम बाद में लूट से देखेंगे। एन जैकब बेथेल लौटे 68:51-71:09। अब जैकब बेथेल लौट आया, यहाँ क्या होगा? अध्याय 35 में जब वह बेथेल वापस आता है, यह 20 साल बाद की बात है। सबसे पहले वह अपने विदेशी देवताओं से छुटकारा पाता है। यह आपको जैकब के बारे में क्या बताता है? जैकब को अपने विदेशी देवताओं से छुटकारा मिल गया। क्या याकूब मूर्ति पूजक था? क्या उसने अन्य देवताओं की पूजा की? तो मेरा अनुमान है कि जैकब इसे इस तरह करता है, ठीक है, यहोवा मेरा दयालु ईश्वर है, आप इब्राहिम, इसहाक और जैकब के ईश्वर को जानते हैं। आप जानते हैं कि यहोवा मेरा ईश्वर है, लेकिन मुझे ये अन्य देवता भी पसंद हैं, क्योंकि आपके पास कभी भी बहुत सारे देवता नहीं हो सकते। आप जानते हैं, आपको बस कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास यहाँ जो कुछ है वह यहोवा और ये अन्य देवता हेनोथिज्म हैं। जैकब का कहना है कि वह इनका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करता है। यह एक अतिरिक्त लाभ की तरह है। जैकब को अपने विदेशी देवताओं से छुटकारा मिल गया। वह अब बेथेल में वापस आ गया है और उसे वास्तविक ईश्वर का सामना करना है। इसलिए अध्याय 35 में वह अपने बुतपरस्त देवताओं से छुटकारा पाता है। तब भगवान आते हैं और दोहराते हैं कि उनका नाम जैकब से बदलकर इज़राइल कर दिया जाएगा। इसलिए इस नाम को वह जो ईश्वर के साथ संघर्ष करता है में बदल दिया गया है। उनका नाम इज़राइल वहां दोहराया गया है। तो फिर आप एक बार फिर दोहराए जाने की क्या उम्मीद करेंगे? जैसे ही वह बेथेल में परमेश्वर के पास वापस आता है, परमेश्वर उससे भी वाचा दोहराता है। वाचा क्या है? वाचा भूमि का वादा है, बीज को बढ़ाना है और वह सभी राष्ट्रों के लिए एक आशीर्वाद होगा। इसलिए जब याकूब बेथेल वापस आता है तो वाचा उसके सामने दोहराई जाती है। इसराइल के इतिहास में बाद में बेथेल मूर्ति पूजा का स्थान बन जाएगा। यह एक ऐसी जगह होगी जहां इसराइल भगवान को छोड़ देता है। और यह दिलचस्प है कि बेथेल नाम कैसे लिया जाता है और मूर्ति पूजा में चला जाता है। बाद में हम देखेंगे कि जेरूसलम केंद्र में आ गया है। राहेल मर जाती है, हमने उस बारे में बात की। बेथेल छोड़ने के बाद रेचेल की मृत्यु हो जाती है। राहेल अपने पिता इसहाक को देखने के लिए जाते समय बेथलेहम के बाहर मर जाती है। राहेल बेंजामिन के साथ मर जाती है। हमने कहा कि यीशु के जन्म के समय शिशुओं की हत्या के समय साथ ही बेबीलोन के निर्वासन के बारे में यिर्मयाह में भी इसकी प्रतिध्वनि हुई थी। इसलिए राहेल की मृत्यु निर्वासन में, यिर्मयाह में और फिर शिशुओं की हत्या में यीशु तक प्रतिध्वनित होती है। इसलिए बेथेल एक महत्वपूर्ण स्थान होने जा रहा है। बेथेल इसराइल के लिए एक धार्मिक स्थल बनने जा रहा है। यह वह स्थान है जहां वे बेथेल भगवान का घर में भगवान से मिलते हैं। वो जैकब और इसराइल की 12 जनजातियां 71:10-73:45। अब सबसे पहले मैं नहीं चाहता कि आप इसराइल की सभी 12 जनजातियों के बारे में जानें। मैं चाहता हूं कि आप उनमें से 4 को जानें। आप तुरंत देख लेंगे कि मैं आपको कौन सी जानकारी बताना चाहता हूं। वे पीले रंग में होंगे। सबसे पहले आपको मिल गया है, मैं उन सभी को यहां रख देता हूं। लिया के पास अधिकांश बच्चे हैं। रयूबेन पहली संतान है, लेकिन 2 ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है लेवी। लेवी क्यों महत्वपूर्ण है? लेवी पुजारी बन गए। मूसा और हारून लेवी के गोत्र से निकले और हारून के वंशज याजक होंगे। इस प्रकार याजक और लेवी लेवी के गोत्र में से निकल जाएंगे। वे पवित्र गोत्र के प्रकार होंगे जिन्हें तंबू उठाने और प्रभु के सामने सेवा करने के लिए दिया गया था। बाद में लेवीय नगर भी होंगे। लेवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। लिया की दूसरी जनजाति जो महत्वपूर्ण है वह यहूदा है। अब यहूदा क्यों महत्वपूर्ण है? यहूदा से कौन होगा? यीशु वहां से होंगे, लेकिन यीशु से पहले कौन? डेविड, इसराइल के राजा दाऊद, सुलेमान, रहुबियाम, हिजकिया, योशिया, दक्षिणी राज्य के सभी राजा यहूदा से आएंगे। इस प्रकार यहूदा राजाओं को वैसे ही प्रदान करेगा जैसे लेवी याजकों को प्रदान करेगा। अब रेचेल के साथ आपको रेचेल के दोनों बच्चों को जानना होगा। उसका पहला बच्चा जोसेफ था। जेनेसिस में जोसेफ वास्तव में एक महत्वपूर्ण किरदार होने वाला है। उनका दूसरा बेटा बेंजामिन है। बेंजामिन क्यों महत्वपूर्ण है? इसराइल का पहला राजा बिन्यामीन के गोत्र से होगा। उसका नाम शाऊल होगा, लेकिन जब मैं शाऊल कहता हूं तो आप नए नियम में शाऊल नाम से किसे जानते हैं? पॉल। अनुमान लगाएं कि पॉल किस जनजाति से है। वह भी बिन्यामीन के गोत्र से है। क्या प्रेरित पौलुस का नाम संभवतः बिन्यामीन के गोत्र के राजा शाऊल के नाम पर रखा गया था? हाँ, तो वे 4 हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप जानें, लेवी, यहूदा, जोसेफ और बिन्यामीन। बाद में यूसुफ का गोत्र विभाजित हो जाएगा। यूसुफ उत्तरी गोत्र होगा और यहूदा दक्षिणी गोत्र होगा। देश उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने जा रहा है। यूसुफ उत्तर दिशा में होगा, यहूदा दक्षिण में होगा। यूसुफ वास्तव में अपने 2 बच्चों एप्रैम और मनश्शे में विभाजित हो जाएगा जिन्हें अन्य जनजातियों के साथ विरासत मिलेगी। बाद में एप्रैम उत्तरी राज्य में प्रमुख जनजाति बनने जा रहा है और यहूदा दक्षिणी राज्य होगा। तो ये इसराइल की 12 जनजातियां हैं और ये 4 वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। पीदीना का बलात्कार 73:46-77:14। तुम्हें याद होगा वहां एक लड़की है, उसका नाम दीना है। ऐसा क्यों है कि ईसाई अध्याय 34 और 38 को छोड़ देते हैं? मैं सिर्फ कहानियों को पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इन पर उपदेश सुना है। ईसाई इन्हें क्यों छोड़ देते हैं? अध्याय 34 सबसे पहले दीना का बलात्कार है। अब दीना, जो लिया की बेटी याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की स्त्रियों से भेंट करने को निकली। और जब हमोर का पुत्र शकेम, मैं उसे गधामानव कहता हूँ क्योंकि उसके नाम का अर्थ गधामानव है, बाहर जाता है और गधेमानव के पुत्र शकेम से मिलता है, तो क्षेत्र के शासक ने उसे देखा, वह उसे ले गया और उसने उसका उल्लंघन किया। यह क्या कहने का एक और तरीका है? उसने उसके साथ बलात्कार किया। तो दीना का बलात्कार हो गया। अब यह लड़का शकेम वास्तव में मूर्ख क्यों है? क्या आप उस लड़की से खिलवाड़ करते हैं जिसके 12 भाई हैं? नहीं, यह सचमुच बेवकूफी है। लेकिन उसके द्वारा उसका उल्लंघन करने के बाद अब क्या होता है? जब याकूब ने सुना कि उसकी बेटी दीना के साथ अत्याचार हुआ है, तो उसके बेटे खेतों में थे। तब याकूब क्रोध और क्रोध में अपनी तलवार लेकर वहां से निकला और उसके पीछे हो लिया। क्या जैकब ने यही किया? क्या जैकब एक आदमी का आदमी है या वह क्या है? एक पिता के रूप में उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या उसे पहले वहां जाना चाहिए था? जैकब क्या कर रहा है? इसमें कहा गया है, जैकब तब तक चुप रहा जब तक वे भाई घर नहीं आ गए। क्या यह मुझे जैकब के बारे में परेशान करता है? यह जैकब लड़का है, मुझे उससे बड़ी समस्या है। अब जब भाई घर आएंगे तो क्या अब कोई समस्या होगी? 12 भाई आते हैं और कहते हैं, भाई अपनी बहन के लिए दुहक और क्रोध से भर गए, दुहक और रोष, क्या यह खराब संयोजन है? तो 12 भाई बाहर चले गए, अब क्या होगा? जैकब थोड़ी शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, और मुझे बस कहानी सुनाने दीजिए। इसलिए वह शकेम और हमोर के पास गया और उन्होंने कहा, मेरे बेटे शकेम को दीना से प्यार हो गया है, वह उससे शादी करना चाहता है। और जैकब कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि हम यहूदी हैं और हम खतने वाले हैं और आप लोग खतने वाले नहीं हैं। तुम खतनारहित हो, इसलिए तुम्हें वापस जाकर अपने लोगों से कहना होगा कि उन सभी का खतना किया जाना आवश्यक है। वैसे क्या हमोर और शकेम वापस जाते हैं और पूरे शहर को खतना कराने के लिए मनाते हैं? क्या यह बहुत बड़ी बात है? हाँ, वे कहते हैं, हम इन लोगों के साथ अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं, हम उनके साथ व्यापार कर सकते हैं और वे हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं, हम उनके बच्चों से शादी करेंगे और वे हमारे बच्चों से शादी करेंगे, हम उनके साथ अंतरजातीय विवाह करेंगे। इसलिए वे सहमत हुए, आओ खतना किया जाए। इसलिए वे पूरे शहर को खतना कराने के लिए मनाते हैं। आपको बाकी कहानी याद है? वैसे क्या इसमें सभी 12 भाई लगते हैं? नहीं, केवल 2 भाई अंदर जाते हैं, लेवी और शिमोन, वे 2 भाई अंदर जाते हैं और पूरे शहर को तहसनहस कर देते हैं। केवल 2 भाई। और यह कहता है कि तीसरे दिन जब वे शांत थे, मुझे लगता है कि यहाँ पाठ कहता है, दर्द में जाहिर तौर पर वे असहाय हैं और मुझे हंसना नहीं चाहिए, यह अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह कुछ ऐसा हुआ है जो खतने को अपवित्र करता है, यह बुरी बात है। तो वैसे भी यह दीना की कहानी है। अब वह कहानी बाइबल में क्यों है? क्या कभी किसी ने उस पर कोई उपदेश सुना है? ठीक है, हमें यहाँ एक मिल गया है, यह दिलचस्प है। प्रयहूदा और तामार, जनरल 38:77-15:81-50। अब यहूदा और तामार की कहानी पर आगे बढ़े। यह अध्याय 38 में है। मैं इस कहानी को यहाँ शीघ्रता से सुनाता हूँ। सबसे पहले कहानी की पृष्ठभूमि, यहूदा ने एक कनानी स्त्री से विवाह किया था, क्या यह अच्छा है या बुरा? यह बुरी बात है। उसके पुत्र उर ने तामार नामक कनानी स्त्री को ले लिया और उससे विवाह कर लिया। उर को क्या हुआ? यहूदा के पुत्र उर ने तामार से विवाह किया और उसका पुत्र मर गया। अब जब बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, तो दूसरे बेटे को क्या करना होगा? उसे पत्नी से शादी करनी होगी और अपने भाई के लिए एक बच्चा पैदा करना होगा। दूसरे शब्दों में वे उसके बच्चे नहीं हैं, उसे अपने भाई के सम्मान में अपने भाई के लिए बच्चे पैदा करने होंगे। वे इसे लेवरेट विवाह कहते हैं और यह उस समय की संस्कृति का हिस्सा था। दूसरे बेटे ओनान का क्या होगा? वह उससे शादी करता है लेकिन उसके साथ यौन संबंध बनाने की प्रक्रिया में वह जानबूझकर बीज जमीन पर गिरा देता है। ओनान में भगवान को इतना परेशान किया जाता है कि भगवान उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो अब उर ने तामार से विवाह किया, वह मर गया। दूसरे बेटे ने तामार से विवाह किया और अब वह मर गया। आपको अपना तीसरा बेटा मिल गया है, क्या आप अपना तीसरा बेटा इस महिला को देने जा रहे हैं? वह स्त्री जिस किसी को भी छूती है वह मर जाता है। अब ये गंभीर है। तो यहूदा कहता है, मेरा बेटा अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है। तामार देखता है कि क्या हो रहा है। अत तामार ने वेश्या का भेष धारण किया। यहूदा, और तुम्हें पाठ के प्रति जागरूक रहना होगा, यहूदा की पत्नी मर गई थी, यह महत्वपूर्ण है। यहूदा की पत्नी मर गई है। तो यहूदा पिता की अब कोई पत्नी नहीं है, वह सड़क पर यात्रा कर रहा है और वह ऊपर आता है और यहाँ तामार को वेश्या की तरह ढका हुआ रखा गया है ताकि वह नहीं जान सके कि यह कौन है। वह कहती है, अरे तुम्हें क्या चाहिए बड़ा आदमी, यह कितने का है? और वह कहता है, क्या आप वीजा या मास्टर कार्ड लेते हैं? और वह कहती है, ठीक है, मुझे दोनों में से कोई एक मिल गया है। मैं बता सकता हूँ कि आपको पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं आपसे जो चाहता हूँ वह आपकी हस्ताक्षर वाली अंगूठी है। अब वैसे वह हस्ताक्षर अंगूठी क्यों महत्वपूर्ण है? क्या वह यहूदा की मुहर वाली अंगूठी है? वह कीचड़ में चिपक जाता है जिससे पता चलता है कि यह वही है, या जैसा कि मेरी पत्नी कहती यह वह है। तो मुझे आपकी छड़ी और आपकी अंगूठी चाहिए और फिर आप बकरी को ले आ सकते हैं और उसे मेरे पास वापस ला सकते हैं। तो वह उसके अंदर चला जाता है और वह गर्भवती हो जाती है। जब वह बकरी को भुगतान के लिए भेजने जाता है तो वह गायब हो जाती है और वह कहता है, ओह ठीक है, वह चली गई। अब थोड़ी देर बाद तामार के गर्भवती होने का पता चला। मेरी बहू वह गर्भवती है, उसे बाहर लाओ, हमारे परिवार को इस तरह से गंदा करने के लिए उसे जला दिया जाना चाहिए। तब तामार बाहर आती है और कहती है, अरे यहूदा, तुम्हें ये याद है? और यह है, ओह अच्छा, और यहूदा पकड़ा गया। आप कहते हैं यह कहानी बाइबल में है, मेरा मतलब है यही हुआ है, यह बाइबल में है। अब क्या बाइबल इस कहानी को मंजूरी दे रही है या यह सिर्फ यह बता रही है कि क्या हुआ था? यह हमें बता रहा है कि क्या हुआ, वर्णनात्मक नहीं निर्देशात्मक। वैसे क्या यहूदा इसराइल का एक बड़ा गोत्र है? यहूदा डेविड है। वस्तुतः तामार ईसा मसीह की वंशावली में है। मैथ्यू अध्याय एक में अनुमान लगाएं कि कौन दिखाई देता है। तामार ईसा मसीह की वंशावली में, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि इस कहानी में है? अब आप कहते हैं, ठीक है हिल्डेब्रांट, क्या चल रहा है? ये दो कहानियां बाइबल में क्यों हैं? मेरे पास एक सुझाव है और मैं आपको जो सुझाव देने जा रहा हूं वह यह है कि आपके पास यहां बड़े भाइयों का सफाया है। बड़े भाई कौन हैं? यहां पहली कहानी में कौन एलिमिनेट होता है? लेवी और शिमोन। आप कहते हैं कि रूबेन सबसे बूढ़ा है। हाँ ठीक है, रूबेन अपने पिता की उपपत्नी के साथ सोया था इसलिए वह भी तस्वीर से बाहर है। तो रूबेन चला गया, लेवी और शिमोन चले गए, यहाँ यहूदा भी चला गया। मुझे लगता है कि यह बड़े भाइयों को खत्म कर रहा है। यह बड़े भाइयों के भ्रष्टाचार को दिखा रहा है, क्योंकि ध्यान किसकी ओर जाएगा? उत्पत्ति की पुस्तक के अंत में ध्यान बड़े भाइयों से हटकर किसकी ओर जाने वाला है? जोसेफ एक रत्न बनने जा रहा है। पुराने नियम में जोसेफ और डैनियल आपके दो प्रमुख विजेता हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पाठ आपको बड़े भाइयों से दूर जोसेफ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साहित्यिक तकनीक के रूप में उपयोग कर रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ यही चल रहा है। आर द जोसेफ नैरेटिव 81-51-84-01। अब मैं जोसेफ कथा पर प्रहार करना चाहता हूँ, यह तेजी से होने वाला है। मैं जैकब और जोसेफ की तुलना करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक में जैकब और जोसेफ की तुलना की गई है। दोनों बहुत अलग किरदार थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन एक जैसा है। उदाहरण के लिए, जैकब कहानी और जोसेफ कहानी दोनों में आपके छोटे भाई का वर्चस्व है। याकूब छोटा भाई है, एसाव बड़ा भाई है। जैकब सर्वोच्च है, जोसेफ छोटा भाई है, बड़े भाई सभी भ्रष्ट हैं, जोसेफ विजेता है। अत छोटे भाई का वर्चस्व रहता है। जैकब की कहानी और जोसेफ की कहानी दोनों में आपको परिवार में कलह और धोखा मिलता है। वैसे आप जैकब नाम में धोखा देख सकते हैं। आप इज़राइल नाम में संघर्ष देख सकते हैं। क्या तुम्हें याद है जब मैंने जैकब की शुरुआत संघर्ष और धोखे से की थी? याकूब के वे दो नाम हैं, याकूब और इसराइल। मूलतः माता पिता का पक्षपात भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता को जन्म देता है। क्या जैकब ने अन्य बच्चों की तुलना में यूसुफ का पक्ष लिया? क्या आपको कई रंगों का कोट याद है? तो जैकब ने उसका पक्ष लिया, और जब भी आपके पास माता पिता का पक्षपात होता है, तो क्या यह भाइयों और बहनों को इसे खत्म करने के लिए प्रेरित करता है? इसलिए माता पिता का पक्षपात परिवारों में भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता और कलह को जन्म देता है। दोनों ही मामलों में छोटा जो खास था, वह 20 साल के लिए अपने परिवार से अलग हो गया। हारान में जैकब अपने परिवार से अलग हो गया है। यूसुफ मिस्र में अपने परिवार से अलग हो गया है। फिर याकूब और यूसुफ दोनों एक विदेशी भूमि में समृद्ध हुए। यूसुफ ऊपर आने वाला है, इसलिए वह फिरौन के अधीन है। याकूब को उसकी सारी संपत्ति लाबान से मिलती है, इसलिए वे दोनों विदेशी भूमि में समृद्ध होते हैं। अंत में अंततः यहाँ वे दोनों अपने जीवन के अंत में अपने बिछड़े हुए भाइयों से पुनः मिल जाते हैं। जैकब एसाव के साथ फिर से मिल गया है, हालांकि इसमें कुछ समस्याएं हैं, और यूसुफ अपने भाइयों के साथ फिर से मिल गया है। अंत में क्या आपको याद है कि यूसुफ और भाई एक साथ आते हैं? तो जैकब और जोसेफ की कहानियां कहानी के स्वरूप में कुछ हद तक समानांतर हैं, हालांकि वे दो पूरी तरह से अलग पात्र हैं। एस जोसेफ और बुद्धि 84-02-85-53। अब एक और प्रमुख बदलाव, मैं कुछ तुलना करके जोसेफ और ज्ञान साहित्य के साथ संबंध दिखाने के लिए उत्पत्ति में जोसेफ कथा की तुलना करना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, जब आप इसे सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको एक कहानी मिल रही है। एक बार की बात है, एक बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति था जिसे एक समस्या थी, और वह अपने राज्य में पूरे राज्य में घूमता रहा। मैं चाहता हूं कि आप कहानी के बारे में सोचें, वह समस्या को हल करने के लिए किसी को ढूंढने की कोशिश में अपने पूरे राज्य में घूमता है, और आखिरकार वह कोशिश करता है और यह फिट बैठता है। निम्न स्तर का व्यक्ति राजा की समस्या का समाधान करता है, और उसे पूरे राज्य का कार्यभार सौंपा जाता है, और वे सभी हमेशा खुशी से रहते हैं। मैं कौन सी कहानी सुना रहा हूं? आप में से कुछ लोग कहते हैं सिंड्रेला, वह सिंड्रेला कहानी है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने कहा होगा, सुंदर महिला। नहीं नहीं, वास्तव में मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ कि क्या यह सिंड्रेला की कहानी अलादीन भी पर बनी प्रिटी वुमन की कहानी है। क्या आप समझते हैं कि इस कहानी का एक रूप है जो बहुत मिलता जुलता है? अब क्या जोसेफ की कहानी के साथ भी आपके पास यही है? राजा के पास यह समस्या थी, उसे ये सपने आते थे और कोई भी इसका समाधान नहीं कर सकता था। अंततः वह जेल में जाता है और उसे जेल में एक व्यक्ति मिलता है जो उसके सपनों की व्याख्या कर सकता है। फिर वह फिरौन के सपनों की सही व्याख्या करता है और निम्न स्तर के व्यक्ति का क्या होता है? उसे ऊंचे दर्जे का व्यक्ति बना दिया गया है और वे सभी हमेशा खुशी से रहते हैं। वह अकाल का सामना करता है और वे 7 साल तक बिना भोजन के रहते हैं और उसके पास उनके लिए भोजन है और वे जाने के लिए तैयार हैं। यह सिंड्रेला कहानी जैसी ही संरचना है जो जोसेफ की कहानी में है। यही कारण है कि जोसेफ की कहानी इतनी सुंदर है। यह उसी प्रकार की कथा पद्धति का अनुसरण करती है। टी जोसेफ, पोतीफर की पत्नी और ज्ञान 85:54-89। अब क्या यूसुफ उस जंगली औरत का विरोध करता है? याद रखें कि पोतीफर की पत्नी उसके पीछे जाती है और वैसे अगर बाइबल में कहीं और ऐसा होता तो बहुत अलग परिणाम होता, परंतु यूसुफ निंदा से ऊपर एक व्यक्ति है। वह पोतीफर का लाभ नहीं उठाता। क्या अपनी ईमानदारी के बावजूद भी उसे जेल जाना पड़ता है? हाँ, तो यह लड़का अच्छा है। नीतिवचन में क्या लौकिक पिता अपने बेटे को चेतावनी देता है कि वह इस तरह जंगली महिलाओं के साथ खिलवाड़ न करे? हाँ, नीतिवचन अध्याय 5 और 7 जंगली महिलाओं के बारे में प्रमुख ज्ञान चेतावनियां हैं। जोसेफ वास्तव में इसका मॉडल तैयार करता है। क्या बुद्धिमान लोग सपनों की व्याख्या करने में अच्छे होते हैं? डैनियल मेसोपोटामिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति है और डैनियल भी नबूकदनेस्सर के सपनों की व्याख्या करता है। यूसुफ फिरौन के सपनों का अर्थ बताता है। उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति सपनों की व्याख्या करना जानता है। इस प्रकार प्रचुरता के 7 वर्ष और अकाल के 7 वर्ष। वह प्रचुरता के 7 वर्षों के दौरान बचत करता है और फिर अकाल के 7 वर्षों के लिए भी बचत करता है। वह बंदीगृह में पिलाने हारे और पकाने हारे के साथ था। यहाँ एक और है। मिस्र के ज्ञान साहित्य में बुद्धिमान व्यक्ति को मूक व्यक्ति कहा जाता है। अब वैसे अमेरिका में बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहने वाला व्यक्ति है, या बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हमेशा अपने मुंह से बातें निकालता रहता है? प्राचीन मिस्र के साहित्य में, और मैं 2000 वर्षों से बात कर रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति को मूक व्यक्ति माना जाता था। क्या यूसुफ ने अपनी भावनाओं को अपने भाइयों से छुपाया? जब वह पहली बार अपने भाइयों से मिला तो क्या उसने अपनी भावनाएं छिपाई और क्या वह चुप था? वह इस बुद्धिमान ऋषि की भूमिका निभाते हैं। वह यहाँ मूक व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। जब मैं ज्ञान साहित्य कहता हूँ तो ईश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है और ईश्वर का भय वास्तव में जोसेफ के साथ घटित होता है। फिर अंत में, और यह मेरा पसंदीदा है, पिता याकूब की मृत्यु हो गई और अब यूसुफ अपने 11 भाइयों के साथ रह गया है। उनके 11 भाई मौत से डरे हुए हैं। वे किस लिए भयभीत हैं? जोसेफ शक्तिशाली स्थिति में हैं, वे कमजोर स्थिति में हैं। भाई यूसुफ के पास आए और बोले, यूसुफ हमें मत मारो। वास्तव में इतने वर्षों पहले हमारा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। जोसेफ क्या कहता है? आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए चाहा था। यह उलटफेर है। क्या ईश्वर उलटफेर करता है? वह जो बुराई है उसे लेता है और उसे अच्छाई में बदल देता है। जोसेफ कहते हैं, आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए चाहा था और पूरी चीज बदल गई। यह ईश्वर का मुक्तिदायक कार्य है। वह जो बुरा है उसे लेता है और उसे अद्भुत चीज में बदल देता है। वह जोसेफ के साथ ऐसा करता है और वह हमारे जीवन के साथ भी ऐसा करता है। हमने उत्पत्ति के साथ काम पूरा कर लिया है। अगली बार हम एक्सोडस से शुरुआत करेंगे। गुरुवार को मिलते हैं। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट पुराने नियम का इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हैं। जैकब की कहानियों के समापन के साथ साथ उत्पत्ति की पुस्तक के समापन पर जोसेफ कथा के परिचय और निष्कर्ष पर व्याख्यान 10। क्रिस्टन सॉयर द्वारा प्रतिलेखित। टेड हिल्डेब्रांट 2 द्वारा रफ संपादित।